तो हॉस्पिटल का एक मिशन है, वो आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। क्योंकि तो हमारा हॉस्पिटल जो है वो आम हॉस्पिटल की तरह नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वो डिफरेंस जो है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक लाइन में बताया जाए तो डिफरेंस क्या है कि हमारा हॉस्पिटल स्पिरिचुअल है, हॉस्पिटल विद डिफरेंस, हॉस्पिटल विद स्पिरिचुअल केयर, ये एक मेजर डिफरेंस है। हाँ, और मृत्यु का रोग नष्ट करने के लिए इसको बनाया है, बहुत डिफिकल्ट स्टैंडर्ड बनाया है आपने। लेकिन इसका संक्षेप में अर्थ ये है कि हॉस्पिटल में सब लोग बीमार होकर आते हैं, कुछ लोग मर भी जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में इलाज करते करते उनको भगवान के विषय में और खुद के विषय में ज्ञान देना, आध्यात्मिक ज्ञान देना, ये हमारे हॉस्पिटल का पर्पस है। सब लोग दोहराएंगे मेरे पीछे, विथ लव एंड डिवोशन वी विल ऑफर एवरी वन अ मॉडर्न साइंटिफिक होलिस्टिक हेल्थ केयर सर्विस बेस्ड ऑन ट्रू अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड्स
ऑफ
बॉडी माइंड एंड
सोल।
तो यहाँ पर केवल शरीर की देखभाल नहीं होती है, शरीर मन और आत्मा की एक साथ देखभाल होती है। संक्षेप में अगर आपको कोई पूछेगा कि अपने अस्पताल का मिशन क्या है, तो आपको ये दो लाइन बताना चाहिए। अगर आपको किसी भी काउंटर पे, किसी भी स्टेज पर, किसी भी फ्लोर पर कोई पूछेगा कि हमारे अस्पताल का मिशन क्या है, तो ये मिशन है कि उच्च दर्जे की मेडिकल सर्विस जितना हो सके उतना सस्ते दाम में बिना भेदभाव के लोगों को देना है। उसमें कोई गरीब अमीर का भेदभाव नहीं करना है, जाति पाति का धर्म का भेदभाव नहीं करना है, जितना हो सके उतना सस्ते में देना है, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मेडिकल क्वालिटी केयर जो है बहुत महंगी होती जा रही है, तो वो उपलब्ध होना चाहिए लोगों के लिए। चाहे फ्री पेशेंट भी हो तो उसको भी वही क्वालिटी ऑफ मेडिसिन ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ये फर्स्ट हमारा मिशन है। और सेकंड मिशन ये है कि ये करते हुए भगवान के विषय में जानकारी और भगवान से संबंध उस व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भाषा बोलने वाला हो, किसी भी देश से आया हो, या किसी भी प्रांत से हो, किसी मातृभाषा बोलता हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, फिर भी जब यहाँ इलाज कर रहे हो तो उसको किसी ना किसी प्रकार से, या तो यहाँ पर काम कर रहे हैं एम्प्लॉय के रूप में, तो किसी ना किसी रूप से उसको भगवान के विषय में जानकारी, पुष्टि, उत्साह, प्रेरणा, इंस्पिरेशन मिलना चाहिए। ये दो हमारे हॉस्पिटल के मिशन हैं। आपको कभी भी कहीं भी कोई पूछेगा तो आपको तुरंत ही उत्तर होना चाहिए। हाँ, कोई कॉम्प्लिकेटेड मिशन नहीं हमारा, बहुत सिंपल मिशन है। अभी ऑब्जेक्टिव्स यानी कि हेतु, हेतु यह है कि सब प्रकार के वैद्यकीय मार्गों द्वारा, यानी कि एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एक्यूपंक्चर, सभी प्रकार के मार्गों द्वारा लोगों का दर्द निवारण करना है, दुख दूर करना है। दूसरा, ये सब करते हुए उनके जीवन में आध्यात्मिकता आना चाहिए, डिविनिटी, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ उनको प्राप्त होना चाहिए। ट्रीटमेंट ही एक बात है, लेकिन ट्रीटमेंट के साथ साथ उनको ये भी जानकारी और पोषण मिलना चाहिए। थर्ड ये है कि ऐसा वातावरण निर्माण करना है जिसमें आते ही लोगों को अंदर जो भगवान की भावना है वो जागृत होनी चाहिए। जैसे कोई चर्च जाएगा तो उसको तुरंत नील डाउन करके भगवान को प्रार्थना करने का मूड आता है। कोई शराब के अड्डे पर जाएगा तो तुरंत उनको शराब पीने का मूड होता है। कोई डिस्कोथेक में जाएगा तो डिस्को करने का मूड होता है ना। वो एक वातावरण का परिणाम होता है। जैसे जैसे ही आप जाओगे वैसा आपको उसका उस तरह की भावना आएगी। तो हमारे यहाँ पे ऐसा वातावरण होना चाहिए हमारे वर्ताव से या सिचुएशन से कि आते ही लोगों को लगना चाहिए कि हाँ, भगवान की जगह है, यहाँ पर हम ठीक हो जाएंगे, यहाँ पर हमको चीटिंग नहीं होगा। हाँ, इस तरह की भावना ऑटोमेटिकली लोगों के अंदर होनी चाहिए, निर्माण होनी चाहिए। मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से लोगों का हृदय परिवर्तन होना चाहिए, भगवान का संदेश उन तक पहुंचना चाहिए, ये भी एक चौथा उद्देश्य है। और पांचवा उद्देश्य जो है वो सब आपके संबंध में है, कनेक्टेड विथ ऑल ऑफ यू। वो ये है कि हम सबको सबको काम करना है ना। आप पहले भी काम करते थे ना, आप भी पहले काम करते थे, सब लोग काम करते थे। लेकिन काम करने की जगह अलग अलग होती है, यहाँ अलग वातावरण है, वहाँ अलग वातावरण था, और किसी जगह अलग वातावरण होगा, किस जगह ऐसा वातावरण होगा कि वो बिजनेस ही चीटिंग का है, उनका स्मगलिंग का है, चीट करने का, लोगों को एक्सप्लॉइट करना है एट द कॉस्ट ऑफ एनीथिंग, प्रिंसिपल सब तोड़ के लोगों को चीट करके पैसा कमाना है, ऐसा बिजनेस ही उनका ऐसा होगा। लेकिन हर व्यक्ति को लगता है कि एक प्रामाणिक जगह हो, अच्छे लोग हों, अच्छा काम हो, प्रामाणिक काम हो, सुरक्षित जगह हो। आप सब लोग अपना जॉब जब चुनते हैं तो क्या क्या देखते हैं उसके अंदर? एक तो अच्छा जॉब होना चाहिए, पैसा अच्छा मिलना चाहिए, पोस्ट जॉब डिस्क्रिप्शन पसंद का होना चाहिए, मेरे स्किल के अनुकूल होना चाहिए, तनख्वाह भी रिजनेबली अच्छी होनी चाहिए। हाँ, यू जस्ट कम इन लिटिल फ्रंट। और क्या देखते हैं उसके साथ में? ये सब हो गया, फिर क्या देखते हैं? सिक्योरिटी होनी चाहिए आपको जॉब की। ऐसा नहीं कि एक महीने के बाद निकाल देंगे, दो महीने बोलेंगे जॉब नहीं है। सिक्योरिटी होनी चाहिए और सेफ्टी। सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके लेडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन आपके साथ काम कर रहा है, वातावरण सुरक्षित है कि नहीं? नॉट नेसेसरली फिजिकली सेफ होना चाहिए, इमोशनली भी सेफ होना चाहिए। जैसे कोई आपको कॉन्स्टेंटली हैरेस कर रहा है, कोई कॉन्स्टेंटली प्रेशर दे रहा है आपको, कोई यू नो यू आर रियली फ्रस्ट्रेटेड, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपने क्या कहा, पीस ऑफ माइंड, मतलब काम आपका शांति से होना चाहिए। ऐसे कई चीज़ें हैं। हाँ, सैलरी इज़ नॉट, आजकल के रिसर्च में बताया गया है कि सैलरी इज़ नॉट द ओनली थिंग विच मोटिवेट्स पीपल। सैलरी बढ़ाने से काम अच्छा होता है ये भी गारंटी किसी के नहीं होती है, लेकिन सेफ्टी सबसे टॉप में होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खास करके लेडीज़ के लिए। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि एक हमारा एक गोल है, यहाँ का लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव है कि ऐसी जगह पर आपको काम करना है जहाँ पर सब लोग सहयोग में काम करते हो, कोऑपरेटिव स्पिरिट, साथ में काम करते हो, मिलजुल के मिशन को समझते हुए काम करते हो, विद इन अ प्योर एनवायरनमेंट, शुद्ध वातावरण में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शुद्ध वातावरण क्या हमारे चर्चा में आगे आगे आएगा। इसमें हमारे कई सारे नियम हैं, हम लोग नॉनवेज एंट्री नहीं करते इसके अंदर, नो टी कॉफ़ी, नो स्मोकिंग, क्या तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, नॉन वेजिटेरियन फूड और बिहेवियर, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे ये प्योर एनवायरनमेंट बढ़ता है। ये क्यों हमने लिखा है यहाँ पर? क्योंकि सब लोगों को काम करना, सब लोगों को अर्निंग करना है, लेकिन एक ऐसी जगह उत्पन्न होनी चाहिए जिसमें प्रामाणिक उद्देश्य हो, कुछ मिशन हो उसके अंदर। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड है, जितना आप लोग इस सहयोग को फॉलो करते हो, यहाँ की प्योरिटी को फॉलो करते हो, उतना वातावरण निर्माण हो जाएगा। वातावरण बिल्डिंग के पेंटिंग से या फोटोग्राफ लगाने से ही नहीं बनता है, उससे भी बनता है, लेकिन अधिकतर किससे बनता है? वो लोगों से बनता है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, अभी कुछ बात कर रहे हैं, कुछ देर बाद बंद करेंगे बात और पूरा बियर की बोतल, दारू की बोतल, नॉन वेजिटेरियन फूड ये सब डिस्को में लाएंगे, तो वातावरण चेंज होगा कि नहीं होगा? तो लोग उसको बदले करते हैं, या तो लोग उसको ख़राब करते हैं, या लोग उसको अच्छा करते हैं, या लोग उसको स्पिरिचुअल बना सकते हैं अगर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन उस तरह का हो तो। तो ये टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टाफ मेंबर्स टू वर्क टुगेदर इन कोऑपरेटिव स्पिरिट ऑफ हार्मनी within a pure environment। हम लोगों को यहाँ पर देखकर, काम करते हुए, सेवा करते हुए देखकर लोगों को लगना चाहिए इस तरह से कि आप लोग भगवान के भक्त हो, किसी भी धर्म के हो लेकिन भक्त हो भगवान के। आप लोगों का बर्ताव देखकर लगना चाहिए कि आप लोगों को लोगों की सेवा करनी है, शुद्ध भावना से, शुद्ध भावना से, हाँ, प्योर कॉन्शियसनेस से, भावना से आपको लोगों की सेवा करने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। आपको लेकर लगना चाहिए कि आप धर्म को मानने वाले लोग हो, उसूल को मानने वाले लोग हो, और अपने काम में भी कुशल हो। ऐसा नहीं कि अपने काम अच्छा नहीं आता है, बात करने में अच्छा है, लेकिन जब आईवी लेने का समय आता है तो चार बार पीट लेते हैं, ऐसा होता है ना कभी कभी। तो अपने काम, जो काम के लिए आप आए हो, वो काम आपका पक्का होना चाहिए, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन में हो, नर्सिंग में हो, किधर भी हो, डॉक्टर हो, यू शुड नो योर वर्क वॉट एवर यू आर डूइंग। प्लस इंटीग्रिटी यानी उसूल होना चाहिए कुछ। अगर गलती हो गया तो यस आई एम सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलती हो गई है फिर भी उसको नहीं 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 करके 10 बहाने बताएंगे, 10 और झूठ बोलेंगे। गलती सबसे होती है, नर्स से भी, डॉक्टर सबसे गलती होती है, लेकिन उसूल जो है ना वो यू हैव टू बी ऑनेस्ट कॉन्स्टेंटली। और आप धर्म को पालन करने वाले लोग हो, ऐसा लोगों को लगना चाहिए। और लास्ट जो है, आपके बर्ताव से यहाँ लगना चाहिए कि आपके अंदर मिशनरी स्पिरिट है। मिशनरी स्पिरिट क्या है? लोगों को क्वालिटी मेडिकल केयर देना है आपको। हाँ, हरे कृष्णा, लोगों को क्वालिटी मेडिकल केयर देना है, सस्ते में देना है जितना हो सके उतना, और करते करते भगवान के साथ कनेक्ट भी करना है। ये मिशनरी स्पिरिट सब लोगों में ज़्यादा कम स्तर पे हो सकता है। हाँ, जितना टॉप लेवल पे है उतना सब लोगों में नहीं हो सकता है, बट आपको ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आप कौन से जगह पर काम कर रहे हैं। चाहे आप 2 साल काम करोगे या शादी होकर चले जाएंगे किसी और जगह पर, जाना पड़ता है बहुत लोगों को, लेकिन जितने समय यहाँ पर हो आप, उतना समय आपको यहाँ का जो मिशन है उससे अपने आप को जोड़ना है आपको, तो ही आपका काम जो है आपको पूर्ण सेटिस्फेक्शन देगा। देखो, नौकरी तो सबको करनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, पैसा सबको चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं, मुझे भी यहाँ पर नौकरी करके पैसा चाहिए, कोई फ्री में यहाँ पर काम नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन नौकरी करके पैसा कमाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता है, उसके आगे भी कुछ चीज़ें होती है। आप एक नर्स हो तो आप एक अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छी क्वालिटी, अच्छे बर्ताव के साथ दे रहे हो, एक डॉक्टर हो तो एक उस तरह से आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, एक एडमिनिस्ट्रेटर हो तो उस प्रकार से आप काम कर रहे हो, संस्था के मिशन को समझ रहे हो, यहाँ पर हम लोग क्यों हैं, स्पिरिचुअलिटी क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, इतना चैरिटी क्यों कर रहे हैं, इससे आपको पता होना चाहिए, तब जाकर आपका यहाँ होना परिपूर्ण होगा। तो क्या है, मुझे क्या करना है, मैं तो नर्स हूँ, काम कर रही जा रही, मुझे क्या करना है, क्या हो रहा है पता नहीं मुझे, तो फिर आपका काम अपूर्ण होगा यहाँ पर। तो ये हमारी यहाँ की पहचान है, दिस इज आवर आइडेंटिटी। आपको देखकर लोगों को लगना चाहिए कि ये मंदिर है यहाँ पर लोग ठीक होते हैं, टेम्पल ऑफ हीलिंग, और यहाँ के लोग जो है वो भगवान पर प्रेम करते हैं, और वो भगवान का प्रेम जो है अपनी सेवा के माध्यम से लोगों को देना चाहते हैं। मेडिकल सर्विस है ना, बहुत बड़ा काम है एक्चुअली। बाकी आप एयरलाइन खोल सकते हो, स्टील का बिजनेस कर सकते हो, होटल खोल सकते हो, बहुत सारा चीज़ है, लेकिन मेडिकल सर्विस बहुत क्रुशल होती है, जब बहुत लोग ज़रूरत में होते हैं, उसमें कोई धर्म जाति का भेद नहीं होता है, बीमार पड़े को देखता नहीं, डॉक्टर हिंदू है क्या तो मैं जाता हूँ, ऐसा कोई देखता नहीं, ठीक करने वाला व्यक्ति चाहिए, बस कुशल चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए, तो वी गो देयर। एडिशनली यहाँ पर हम सबके हृदय में भगवान का प्रेम हो या है, तो उसके प्रति, उसके वजह से हम लोगों को सेवा करने के लिए आ रहे हैं, ऐसा लोगों को लगना चाहिए। वैसे अभी भी काफ़ी अच्छा इमेज लोगों के अंदर बना हुआ है हमारे हॉस्पिटल का, कि यहाँ के लोग अच्छी बात करते हैं, यहाँ के लोग भगवान भावना भावित है, डिवोशनल है, और समय पर जवाब देते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बिजी रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जवाब मिलता है, गाइडेंस बहुत अच्छी तरह से होता है, और विश्वास होता है यहाँ पर आने के बाद कि भगवान की जगह है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये प्रकार की भावना जो है ना, वो किसी एक व्यक्ति का श्रेय नहीं है, सबने मिलकर ये वातावरण निर्माण किया है कि आते लोगों को लगता है कि ठीक हो जाएंगे, यहाँ पर गॉड है तो आई विल बी ऑल राइट। और हमको देखकर कभी भी लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप लोग बहुत ग्रीडी हो, बहुत लोभी हो, पैसे के लिए ही इतना करोड़ों का हॉस्पिटल बना के रखा है, इतनी कॉस्टली मशीन ला के रखी है ताकि लोगों को लूट सके, बीमारी के बहाने, बीमारी को ट्रीटमेंट देने के बहाने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, वेटिंग फॉर पीपल टू कम एंड मेक मनी, उसमें कोई दया नहीं, कोई करुणा नहीं, कुछ नहीं, जस्ट टू मेक मनी इज द ओनली बिजनेस वी हैव, वी डोंट केयर, डिपॉजिट 50,000 रुपये है तो एडमिट हो जाओ, नहीं तो बाहर से भारी स्टेशन खड़ा करते हैं, वहीं से ट्रांसफर कर देते पेशेंट, ऐसा आजकल चल रहा है मेडिकल वर्ल्ड में। तो लोगों को लगता है कि इतना बड़ा करोड़ों का हॉस्पिटल बना कर खाली पैसा बनाने के लिए बना रखा, बीमार लोगों के भरोसे पर पैसा बनाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं बना के रखी है, ऐसा लोगों को आपको देख के लगना नहीं चाहिए किसी भी स्थिति में। हाँ, इसलिए हमारे हॉस्पिटल में गुरुजी ने हमको बता दिया है कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को केवल पैसा नहीं है इसलिए ट्रीटमेंट नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। हम लोग कभी भी किसी भी पेशेंट को इमरजेंसी में आएंगे तो डिपॉजिट भरो पहले, ये करो, ऐसा कोई बात नहीं करते, पहले सेटल करते हैं उसको, चाहे उसको 1 घंटा लगेगा, कभी 6 घंटा लगेगा, सेटल होने के बाद में फिर वो बातें करते हैं, डिपॉजिट भरना है, एडमिट करना है, कि इमरजेंसी से ऊपर जाना है, इधर होना है, ट्रांसफ़र भी करना है समझो किसी बड़ी संस्था में, KM हॉस्पिटल में वगैरह वगैरह, तो भी सेटल होने के बाद में करते हैं, इसमें बहुत सारा नुकसान भी हमारा होता है, लेकिन हम लोग वी आर ऑल राइट विद दैट, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पैसा बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए, इतना निश्चित, क्योंकि मैं ट्रस्टी हूँ और मैं हमारे ट्रस्टी चेयरमैन जितने भी ट्रस्टीज हैं सबको मैं अभी कम से कम 22 साल से जानता हूँ जब से ये ट्रस्ट बना हुआ है, और मैंने आज तक कभी भी ट्रस्टियों को बिजनेस के बारे में बात करते किसी मीटिंग में देखा नहीं है। वाई नॉट, मनी इज नॉट देयर, इतना लॉस क्यों हो रहा है, इतना प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है, ये मशीन ला के आया तो लॉस में क्यों जा रहा है, एक ही डिपार्टमेंट का प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा कभी बातचीत हुआ नहीं हमारा आज तक। साल में एक बार खाली सैलरी रिविजन में पैसे की बात करते हैं, साल भर हम कैंप्स की, प्रोजेक्ट्स की, सर्विस की, सर्विस प्रोवाइड करने की बातें करते रहते हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि यह संस्था में, ये संस्था शुरू से ही पैसे के लिए नहीं बनाई गई। और हकीकत भी यह है कि इसमें जो फाउंडर डॉक्टर्स हैं जिन्होंने हॉस्पिटल बनाया, आपने फिल्म देखा होगा ना थोड़ा सा कुछ जानकारी, वो लोग आज भी और तभी भी अगर इसके बाहर कभी काम करते तो इसके 3 गुना अर्निंग करते। ये भी आज की भी हकीकत है, तभी भी की हकीकत थी, सच्चाई है। मैंने देखा है, डॉक्टर दलाल को देखा है, डॉक्टर संकी को देखा है, डॉक्टर राठौड़ को देखा है, आज भी देख रहा हूँ। आज भी वो भाग जाते हैं कहीं यहाँ छोड़कर, तो आज से 3 गुना अर्निंग करेंगे, फिर भी यहाँ पर क्यों बैठे हो? 30 साल हो गए उनको, 20 साल तो यहाँ पर हो गए, 30 साल तो मिशन में हो गए, क्योंकि वो कभी भी मोटिवेशन उनका पैसा नहीं था, उनका एक स्पिरिचुअल मोटिवेशन था, इसलिए वो साथ में आए और एक साथ आकर कई सारे सैक्रिफाइस करते हुए ये अस्पताल को बनाया। और अस्पताल अगर पैसे के लिए होता तो इतने 50 कैंप करने की जरूरत क्या थी? इतना लॉस है उसके अंदर, कोई इनकम तो है नहीं उसमें। स्पिरिचुअल केयर में क्या है, कुछ इनकम है क्या? देयर इज नो इनकम। एनी सर्विस स्पिरिचुअल केयर फ्री ऑफ चार्ज, कंसल्टेशन फ्री ऑफ चार्ज, काउंसलिंग फ्री ऑफ चार्ज, मंदिर घूम रहे हैं फ्री ऑफ चार्ज, प्रसाद बांट रहे हैं फ्री ऑफ चार्ज, हर सेवा फ्री ऑफ चार्ज है यहाँ की स्पिरिचुअल केयर की। और कम्युनिटी में सब कुछ काम फ्री में होता है और कोई ऐसा घाटे का सौदा करता नहीं है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, वो बढ़ता ही जा रहे हैं। अभी कल यही हॉस्पिटल एक ऐसा है जिसमें कम से कम बहुत सारे सर्विसेज हैं और चार्जेस भी होते हैं, बाकी जितने बाकी सारे हॉस्पिटल हैं वो चैरिटेबली काम करते सब कुछ। बरसाना है जो वृंदावन से 50 किलोमीटर आगे है, एक वृंदावन में हॉस्पिस है और हॉस्पिटल है वो भी ऐसा ही है। श्रद्धानंद हॉस्पिटल वसई में बनाया है, उसमें भी 90% काम फ्री होता है। उधर वाड़ा में हॉस्पिटल बनाया है, वो भी वैसा ही है। पीवी दोषी में क्या है आप बताओ? पूरा चैरिटी डिपार्टमेंट हमारा वहाँ शिफ्ट कर दिया हम लोग ने। यहाँ पर जो 250 रुपीज़ कंसल्टिंग चार्ज है, वहाँ पर कितना है? 50 रुपीज़ ओनली, 50। और बाकी भी उतना ही सब कम कम है, पैथोलॉजी भी वैसा ही है, सब तरह का। और फुल है वो जिससे लिया है तब से, तो फुल होने के बाद तुरंत 100 रुपये नहीं किया हमने उसका, 150 रुपये नहीं किया तुरंत। हाँ चलो शुरू में जरा कम करके बिजनेस बढ़ाते हैं, बाद में एकदम बढ़ाएंगे और बिजनेस बनाएंगे, नहीं कर रहे हैं। 3 साल पूरे हो गए, 50 रुपये ही रखा है। और जो डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल है वही वहाँ पर जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी बाहर के कोई सेकेंड थर्ड डॉक्टर को बैठा है, यहाँ के डॉक्टर जाकर वहाँ बैठते हैं टर्न बाई टर्न। तो चैरिटी, स्पिरिचुअलिटी, सर्विस, ये हमारा मोटिवेशन रहा है हमेशा, इसलिए कभी भी हमको इस दायरे में नहीं आना है लोगों की दृष्टि से। एक और बात हमको समझना ज़रूरी है कि ये अस्पताल की इंडस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन है? हाँ, श्रील प्रभुपाद। और बाकी लोगों का विचार क्या है? हाँ, कंसल्टेंट डॉक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, आप कह रहे हैं प्रभुपाद जी इम्पोर्टेंट है, और किसी का कोई विचार है? हाँ, डॉक्टर्स की टीम, कोऑर्डिनेशन, और नर्स इम्पोर्टेंट नहीं है? हाँ, ये सब लोग इम्पोर्टेंट है। हाँ, बट दी मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन है इसके अंदर? पेशेंट। क्योंकि हम सब लोग, मैं डॉक्टर हूँ, आप नर्स हो, कोई डॉक्टर है, कोई और कोई अलग अलग विभाग में काम कर रहे हैं, अगर पेशेंट नाम का व्यक्ति यहाँ पर आएगा ही नहीं तो क्या होगा? एक एक कर को VRS देना पड़ेगा सब लोगों को लाइन से, कोई कुछ काम ही नहीं इधर, क्या करेंगे आम लोगों को, सब लोगों को। अभी आपने रिटेल्स में कुछ एक प्रोफेशन लिया, आपने अभी यहाँ पर प्रोजेक्ट लिया है, आपके दुकान में मरीज दवा लेने को आएगा नहीं तो आपको क्या फ़ायदा है आउटलेट खोल के आप? तो वो जो मरीज नाम का व्यक्ति है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप रिसर्च कर रहे हो, पेशेंट नहीं आएगा तो रिसर्च किस पे करेंगे? खुद पे करेंगे ना, पॉसिबल। तो पेशेंट सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है जो आपको सबको काम दे रहा है, आप सबको जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि वो पेशेंट नाम का व्यक्ति अंदर आ रहा है और वो आपका अन्नदाता भी है। आप बोलेंगे तो आप पेशेंट को मिलते ही नहीं हो, तो एडमिन में बैठे रहते, किसी पेशेंट को मिलते कभी आप नहीं मिलते हो, लेकिन उसके ही कनेक्टेड काम कर रहे हो आप। वो आ रहा है इसलिए उसके कनेक्शन मैनेजमेंट हो रही है, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, नहीं तो उसका कोई काम ही नहीं है। और जब वो आकर यहाँ पर बिल भरता है तब हम सबकी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, सबकी तनख्वाह निकलती है, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। वो चाहे कितना गरीब दिखता हो, डिस्काउंट वाला हो, कंसेशन वाला हो, फ्री वाला हो, कभी भी हम उसका भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमारे पास ट्रीटमेंट लेने को जो भी आता है, चाहे बिलिंग काउंटर पे आ गया, रिसेप्शन पे आ गया, या किधर इंक्वायरी में आ गया, किधर किसी भी में आ गया, हमारा ये भाव होना चाहिए कि दिस इज़ माई अन्नदाता, ये मुझे रोटी देता है, ये जब तनख्वाह, ये जब पैसा भरता है तो मेरी तनख्वाह निकलती है और मेरा घर बीवी बच्चे चलता है, दैट मूड शुड बी देयर। और यहाँ पर ये बहुत ऊंची बात बताई है कि हमारे स्वामी जो है वो कृष्ण भगवान है, उनके प्रतिनिधि के रूप में प्रभुपाद जी बैठे हैं और जो भी मरीज यहाँ पर आ रहे हैं वो सब उनके मेहमान हैं। वी थिंक लाइक दिस कॉन्स्टेंटली, क्योंकि कैसा है ना, हॉस्पिटल बहुत है यहाँ पर मेरा रोड में, हमारे जैसे भी है, हमारे रेट वाले, हमारे से सस्ते भी है और हमारे से महंगे भी है, हर प्रकार का चॉइस मेरा रोड में अवेलेबल है। वो सबको छोड़ कर तुम्हारे पास क्यों आ रहे हो? उनके पास में इंदिरा नर्सिंग होम है, उनके पास ऑर्बिट है, उनके पास और तुंगा हॉस्पिटल है, उनके पास वोकार्ड हॉस्पिटल है, उनके पास नाम लेते जाओ आप, सब सब प्रकार के हॉस्पिटल है, लेकिन फिर भी वो हमारे पास आ रहे हैं। ट्रस्ट निर्माण हो गया शायद, या हमारे स्पिरिचुअलिटी पे उनको फेथ है, या हमारे ऑनेस्टी पे उनको फेथ है, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी उसके ऊपर एक बात है ऐसी कि जो प्रभुपाद जी चाहते हैं वो लोग यहाँ पर आते हैं, जॉब करने के लिए भी और पेशेंट के रूप में भी, क्योंकि यहाँ पर भगवान का नाम है, यहाँ पर प्रसाद प्राप्त होता है, यहाँ पर भगवान के भक्तों का दर्शन होता है, यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो मांसाहार नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, जुआ नहीं खेलते, नशा नहीं करते, भगवान के नाम का जप करते हैं, बहुत रेयर है ये सब। ये आजकल डॉक्टर मतलब क्या, ड्रिंक्स ये वो सब चाहिए उसको, खाली रात को मिलना उनको, आप बस दिन में मत मिलना, तो कॉन्फ्रेंस में मिलना कभी रात को, फिर देखना आप बिग बिग डॉक्टर्स क्या करते हैं, 10 मिनट के अंदर बेहोश हो जाते हैं दारू पी के। तो ये जगह हमारी इसलिए ग्रेट नहीं है, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि अगर मैं कहीं काम करता किसी हॉस्पिटल में तो मेरे कलीग सब ऐसे ही होते, दारू पीने वाले, मांस खाने वाले, नशा करने वाले, नॉनसेंस बात करने वाले, थर्ड क्लास लैंग्वेज यूज़ करने वाले, ये सब हमारे कलीग ऐसे होते हैं। लेकिन ये अस्पताल में ऐसा होता नहीं है, मुझे यकीन है मेरे डॉक्टर संखे, डॉक्टर दलाल, बाकी जितने डॉक्टर्स यहाँ पर काम करते हैं वो सब लोग सभ्य लोग हैं, बहुत जेंटलमैन लोग हैं, उनके बात करने का तरीका, उनके लाइफस्टाइल सब डिवोशनल एंड प्योर है। तो ऐसा वातावरण प्राप्त होने के लिए सबका नसीब नहीं होता है, जिसके भाग्य में है, जिसने पुण्य किया है वही यहाँ पर मरीज बन के ट्रीटमेंट लेने के लिए आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई चीटिंग नहीं होता है, बिना ज़रूरत के लंबा स्टे, बिना ज़रूरत के 15 मेडिसिंस, बिना ज़रूरत के ऑपरेशंस, बिना ज़रूरत के कंसल्टेशंस, रेफरल्स, यहाँ पर कोई भी काम ऐसा नहीं होता है 100%, क्योंकि मैं ट्रस्टी हूँ, मैं जानता हूँ। और कभी आपको दिखता है ऐसा कुछ हमको बताना आपका फ़र्ज़ है कि सर आपने तो कहा था कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है, तो हमको इन्फॉर्म करो, हम उसको तुरंत करेक्ट करेंगे, सख्त उपाय करेंगे उसके ऊपर, अगर हमारी नज़र नज़र के बाहर कोई ऐसा काम कोई कर रहा है यहाँ पर अनजाने में। तो इसलिए हम सब स्टाफ मेंबर्स हैं, डायरेक्टर से लेकर सब लोग, हाउसकीपिंग से लेकर मेंटेनेंस तक, प्लम्बर तक, वो सब लोग पेशेंट के हम लोग सेवक हैं। इसी मूड में आपको रहना है यहाँ पर, वी आर हियर ओनली टू सर्व। हाँ, अपना एक ही प्रिविलेज है यहाँ पर, वो है मरीज की सेवा, और मरीज की सेवा अगर नहीं करना है हमको तो आप कृपया कोई और जॉब ढूंढ लीजिए, क्योंकि हॉस्पिटल में काम करना है तो मरीज की सेवा ही करनी पड़ती है, और कोई काम नहीं होता यहाँ पर। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्शन आपका मरीज के साथ की सेवा का ही है, और मरीज की सेवा में आपको रुचि नहीं है तो आप किसी भी और कंपनी में जाके जॉब ले लो, लेकिन यहाँ पर आपको रहना है तो मरीज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। हाँ, उसको भगवान का कनेक्शन देना है, उसको हाई क्वालिटी सर्विस देनी है, उसको मिनिमम जितना हो सके उतना देना है, गरीब हो तो डिस्काउंट देना है, एकदम गरीब हो तो फ्री में करना है, कैंप में जाके उसको लेके आना है, कभी भेदभाव नहीं करना है। ए, अभी कैंप का लोगों का सर्जरी चल रहा है, ए उनको रखो बाजू में, वो डीलक्स पेशेंट है, उनको VIP है, उसको ठीक से देखना है, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अंडर जो भी आएगा वो VIP डीलक्स पेशेंट आएगा, मंत्री का बेटा भी आएगा, या गांव से कोई एकदम अनपढ़ आदमी, गंवार आदमी भी आएगा ट्रीटमेंट लेने के लिए, आपके पास आएगा तो आपके दर्जे का सेवा उसको मिलना चाहिए, उसके दर्जा देख के आपको उसकी सेवा बदलनी नहीं है। आपका दर्जा क्या है, आपने क्या दर्जा यहाँ पर डिसाइड किया है, इस्टेब्लिश किया है, वो स्टैंडर्ड से आपको उसको ट्रीटमेंट देना है। जैसे आप बड़ा डबड़ा खाओगे तो ईरानी के दुकान में खाओगे, रोड पे ठेले पे खाओगे तो आपको एक स्टाइल में मिलेगा वो, लेकिन ताज में जाओगे तो पहले एक ग्लास आएगा टिश्यू पेपर के साथ, फिर एक नैपकिन आएगा, फिर एक प्लेट आएगा, फिर उसके बाद चम्मच आएंगे, फिर उसके बाद में सॉस और चटनी आएगा, उसके एंड में ऐसा एक सिल्वर थाली में बड़ा डबड़ा आएगा। आप बोलेंगे क्या डिफरेंस है उसके अंदर, वही तो आटा है, वही चने का आटा, वही आलू, वही फ्राई किया हुआ है, इसमें क्या है। पर ताज क्या बोलता है, आप मेरे पास आओगे तो आपको ये स्टैंडर्ड का सर्विस मिलेगा, दाम भी वैसा होगा लेकिन स्टैंडर्ड बदली नहीं करेंगे। कोई रस्ते का आदमी आएगा तो उसके लिए वो कोने में अलग टेबल लगाए नहीं कि इनको जरा यहाँ पर फोर्थ क्लास सर्विस यहाँ पर दे दूँ, ऐसा नहीं। उनका उनके बिल्डिंग में जाएंगे तो आपको उनका लेवल का सर्विस मिलेगा। उसी तरह से भक्ति विधान में कोई आएगा तो भक्ति विधान के दर्जे का सर्विस उसको मिलना चाहिए, चाहे वो फ्री हो, टोकरी बनाने वाला फ्री वाला पेशेंट हो हाईवे वाला, या किसी मर्सिडीज बेड के आया हो डिलक्स सुपर डिलक्स वार्ड में एडमिट हो गया हो। यू शुड नॉट चेंज द क्वालिटी ऑफ सर्विस, ये ध्यान में रखते हुए कि मरीज इज आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन हियर। प्रभुपाद जी भगवान इम्पोर्टेंट जरूर है, डॉक्टर्स भी इम्पोर्टेंट है, नर्स भी इम्पोर्टेंट है, सब लोग इम्पोर्टेंट है, लेकिन दी मोस्ट इम्पोर्टेंट सबको मीनिंग देने वाला कौन है? मरीज। ओके, तो ये सब हासिल करने के लिए कई गुणों की आवश्यकता है। सबसे पहले आपको आपका जो काम है उसमें आपको एफिशिएंट होना चाहिए, चाहे यहाँ पर काम करो या कहीं भी करो, आपके काम में तो आपको कुशल तो होना ही है। इफ़ यू डोंट नो योर वर्क यू विल बी आउट वेरी सून, है ना। तो सबको अपना अपना काम ठीक से आना चाहिए, जो जो काम के लिए आपको लिया गया है, जो जो आपने एजुकेशन लिया है, जिसकी जिस पोस्ट पर आप आए हो, वो काम आपका एफिशिएंटली होना चाहिए। दूसरा, काम प्रामाणिकता से होना चाहिए। भारत के लोग दुनिया भर में डिमांड में हैं, क्यों? क्योंकि ईमानदार होते हैं, 8 घंटा काम की तनख्वाह लेते हैं, 8 घंटा काम भी करते हैं, डिफिकल्ट कंडीशन में भी काम करते हैं। कभी एसी चला नहीं चला, कभी वार्मर चला नहीं चला फॉरेन कंट्री में, कभी कुछ फैसिलिटी मिला नहीं मिला, कभी कुछ सॉफ्टवेयर पसंद का है नहीं पसंद का है, वो काम करते रहते हैं। इसलिए भारत का स्टाफ जो है वो दुनिया भर में डिमांड में रहते हैं। ये हमारे लोगों की खासियत है और हमको ये उसूल होना चाहिए कि अगर मैं किसी जगह पर कुछ तनख्वाह ले रहा हूँ तो उस तनख्वाह के अनुसार मुझे सर्विस देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बॉस आए तो हम लोग बिजी कुछ काम कर रहे दिखाई पड़ रहे, बॉस गए तो फिर बैठ गए स्वच्छंद विहार कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज वर्क सिंसियरली एज पर आवर जॉब डिस्क्रिप्शन। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको जो काम दिया है ना वो जिम्मेदारी से करना है। ऐसा नहीं कि 10 बार पूछना पड़ेगा आपको हुआ क्या हुआ क्या, हाँ मैं करती हूँ, हाँ मैं शाम को दूंगी, हाँ मैं आधा हो गया, अभी हाँ अभी ये कंप्यूटर बंद हो गया था, अभी ये लाइट गई थी, अभी ये हो गया था। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आपको एक काम दिया, आपका नाम क्या है?
अपेक्षा।
अपेक्षा को काम दिया तो अपने आप उसका रिपोर्ट आएगा, सर 5 बजे तक अभी 50% हो गया है, कल 11 बजे तक पूरा काम आपको मिल जाएगा। बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़नी पड़ेगी। ऐसा आपका रेपुटेशन होना चाहिए कि मैं अगर अपेक्षा हूँ, मेरे पास जो भी काम आएगा वो टाइम पे पूरा करके सर को रिपोर्ट किया जाएगा। उसको बार बार पूछ रहे हैं, बार बार मिस्टेक कर रहे हैं, दोबारा 3 बार याद कर रहे हैं, मतलब सर को कॉन्फिडेंस नहीं है कि इसको दिया मतलब होगा कि नहीं होगा, या ऐसा लगता है इसको दिया मतलब होगा ही नहीं, कभी वो 10 बार बोलना ही पड़ेगा तभी होगा। ऐसा हमारा रेपुटेशन नहीं होना चाहिए, वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल। एक बार हमारा काम पास काम आया तो इस तरह से करना चाहिए कि पूरे मैनेजमेंट को आप पर विश्वास चाहिए कि ये जो ये आदमी को काम दिया ना तो हो जाएगा, डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। उसके बाद में वेल बिहेव्ड, आप कुशल भी हो, प्रामाणिक हो, रिस्पॉन्सिबल हो, आपका व्यवहार भी उतना अच्छा होना चाहिए। आप एकदम एक्सपर्ट नर्स हो लेकिन मरीज के साथ बात करने में आपको अगर तरीका नहीं है तो लोग पसंद नहीं करेंगे आपको। इसलिए अच्छा व्यवहार हमारे बाकी सारे गुणों को महत्व देता है। इफ़ यू आर एक्सपर्ट एंड वेल बिहेव एंड सिंसियर रिस्पॉन्सिबल परफॉर्मर हाई टास्क परफॉर्मर, अगर बिहेवियर भी आपका अच्छा होगा ना, यू आर मोस्ट वांटेड, कोई भी डिपार्टमेंट में आपको तुरंत वो एक्सेप्ट कर लेंगे, बिकॉज नेचर इज़ वेरी गुड, कोऑपरेटिव, हेल्पफुल। फिर सिंपल एंड क्लीन, हमारे यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है सिंपल एंड क्लीन की, बाकी बाहर शायद ज़रूरत नहीं होगी लेकिन यहाँ पर सिंपल हार्टेड और क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, शरीर से, मन से, तन से, आत्मा से, बिकॉज वी आर हेयर टू सर्व एंड डिवोशन एंड प्योरिटी इज़ आवर मिशन ओवर हियर। लास्ट मिनट सेकेंड लास्ट लिखा है सर्विस एटीट्यूड। एक बार कह चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि पेशेंट मतलब सर्विस, वी आर सर्विस इंडस्ट्री, हम लोग सर्विस इंडस्ट्री से हैं, हमारे यहाँ पे लोगों की सेवा होती है, किसी मशीन की या मोटरसाइकिल की या कार की या कबर्ड की या ऐसे वस्तुओं की सेवा नहीं होती जो निर्जीव होते हैं, हमारे यहाँ पर सजीव लोगों की सेवा होती है, जो इंसान होते हैं, जो दर्द लेके आते हैं हमेशा। तो अगर हमको नौकरी करनी है, पैसा चाहिए, लेकिन हमको सेवा का भाव नहीं है हमारे अंदर, तो मैं कहता हूँ कि मेडिकल इंडस्ट्री आप छोड़ दो, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी सब छोड़ के आप कहीं और काम करो, क्योंकि यहाँ पर हमारे तुम्हारे जैसे लोग दर्द में आते हैं और दर्द में आने वाले लोगों के प्रति अगर आपको करुणा नहीं है, मन में कुछ होता नहीं है, आपके अंदर कुछ होता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर काम करने के लिए फिट नहीं है। मेडिकल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को हृदय में दर्द होना चाहिए, लोगों का दर्द देख कर वही व्यक्ति मेडिकल में काम करने के योग्य है, वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा सेवा में, अपनी सेवा कुशलता से करेगा। और लास्ट जो है हमारे यहाँ की ज़रूरत है वो ये है कि हमारा हॉस्पिटल एक सिंपल हॉस्पिटल नहीं है, हमारा हॉस्पिटल के साथ में कुछ और जुड़ा हुआ है, डिवोशन, सर्विस, स्पिरिचुअलिटी, तो उसको समझते हुए काम करना है। कुछ लोग कहेंगे हमको क्या करना है स्पिरिचुअल से, मैं तो ना डॉक्टर हूँ या क्या, अपना काम करके चला आता हूँ, ठीक है। लेकिन जो अगर आपको यहाँ पर, क्योंकि ये इस मिशन को आप समझेंगे ना, तो लोगों को लाभ होने के पहले आपको लाभ होगा। फर्स्ट बेनिफिशियरी विल बी यू ऑफ द एटमोसफियर। और जब आपको लाभ होगा तो ऑटोमेटिक आप दूसरों को लाभ देना आरंभ करेंगे। यह हमारे संस्था का मिशन है। तो उसको आप समझेंगे जितना समय यहाँ रहोगे, तो यू विल बी हैप्पी एंड एवरीबडी एल्स विल बी हैप्पी विथ यू। दिस स्टेटमेंट स्पेशली अप्लीकेबल टू भक्तिवेदांत हॉस्पिटल। भगवान जो है वो करुणा के सागर हैं, और उनकी करुणा हमारे लिए है, सबके लिए, सब जीवों के लिए। लेकिन उसके लिए माध्यम होना चाहिए, मीडियम। Somebody has to become instrument and give that compassion to you, to the patients. इसलिए हम लोग एक तरह से फरिश्ते लोग हैं। कुछ ज़्यादा गर्व करने की बात नहीं है, बट हमारा पेशा जो है मेडिकल या पैरामेडिकल या whatever नर्सिंग, ये भगवान की हमारे पर बड़ी कृपा है। क्योंकि एक दर्दी जीव का दर्द निवारण करने का काम है ना, बहुत पुण्य का काम होता है। इट्स अ बिग वर्क एक्चुअली टू रिलीव somebody's पेन। प्राणी नाम आरती नाशनम, किसी भी जीव का दर्द कम करना बहुत पुण्य का काम है और भगवान का काम है। भगवान चाहते हैं किसी को दर्द ना हो, और भगवान चाहते हैं किसी का दर्द हो तो वो कम किया जाए। तो उनकी जो करुणा है वो अगर हम उसके औजार बनेंगे और हमारे तरफ से वो करुणा उन तक पहुँचाएंगे भगवान की, मेडिकल प्रोफेशन के माध्यम से, नर्सिंग के माध्यम से, पैथोलॉजी के माध्यम से, और किसी मेडिकल पैरामेडिकल वर्क के माध्यम से, हमको भगवान की करुणा जो है ना लोगों तक पहुंचानी है। सो वी वांट भक्तिवेदांत हॉस्पिटल फैमिली मेंबर्स ऑल ऑफ अस टू बिकम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गॉड्स कंपैशन टू सर्व एवरीबॉडी टू रियली सेटिस्फाई देम। दे शुड, उनका जो श्रद्धा आपके ऊपर आप उन्होंने दिखाया है कि यहाँ पर आऊँगा तो ठीक हो जाऊँगा, वो श्रद्धा परिपूर्ण होना चाहिए। आपको उसको कंप्लीट करना है, उनको श्रद्धा को ठेस नहीं पहुँचाना है कि क्या सोच के आया था भक्तिवेदांत में, सोचा भगवान का हॉस्पिटल है, हरे कृष्णा बोलते हैं तो कुछ चीटिंग नहीं होगा, लेकिन देखो डबल बिल लगाया है, ये बिना बताए ऑपरेशन कर दिया है, अभी पता नहीं पैसा कहाँ से आएगा, ऊपर से ठीक बात भी नहीं करते हैं, बोले पता नहीं क्या ढोंग बना के रखा है यहाँ पर हरे कृष्णा का, ऐसा बोलेंगे ना जरूर तुरंत। तो वो श्रद्धा जो लोगों के मन में है उसको किधर भी हमारे तरफ से ठेस नहीं पहुँचना चाहिए। ये बड़ी कसरत है हमारे लिए। एक मूड हमने गुरु जी के इच्छा से तैयार करने का प्रयास किया है, वो मूड को बनाए रखना बहुत डिफिकल्ट काम है वो, क्योंकि कोई ना कोई लोग आते हैं जो अलग मूड में आते हैं, उनका मूड का सबका लाइन में लाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए कांस्टेंट प्रयास करना पड़ता है। यहाँ का डेकोर, यहाँ का वातावरण, यहाँ का बोलने का स्टाइल, यहाँ का चलने का स्टाइल, यहाँ का काम का स्टाइल, प्रिंसिपल्स यहाँ के, नो चीटिंग, ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ों को सब बनाए रखना बहुत मुश्किल है। अभी आप इस सबको छोड़ दो और मनी टॉप में लेके आओ, तुरंत सब लोग उसको अडॉप्ट हो जाएंगे। क्योंकि बुराइयों को अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, झूठ बोलना आसान होता है, सच बोलते रहना मुश्किल होता है ना। चीटिंग करना आसान होता है, लेकिन ऑनेस्टली काम करना मुश्किल होता है। कोई भी अच्छाई को अपना कर चलना है तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि पानी को ऊपर चढ़ाना है तो पंप लगाना पड़ता है, नीचे भेजना है तो कुछ करना पड़ता है क्या? पहले छोड़ दो उसको, अपने आप नीचे जाएगा वो। वैसा ही है, अच्छे गुणों को, अच्छे वातावरण को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इन सब में आपको समझना ज़रूरी है और आपकी सहायता भी ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को वातावरण बनाना है। जितने लोग भी बढ़ते, अभी आप लोग भी कितने लोग हैं, 20 लोग को बैठे यहाँ पर, 20 ऐड हो गए दिसंबर में, जनवरी में और जितने भी 8-10-15 ऐड हो जाएंगे, कुछ लोग छोड़ के भी जाते हैं, लेकिन संख्या कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। छोड़ के जाने के बाद भी 900, 910, 915, अगले में 925, एक दिन 1000 हो जाएंगे। जितने लोग ऐड हो जाते हैं उतना वातावरण को बनाए रखना बहुत मुश्किल होते जाता है। इसलिए ये प्रोग्राम रखा है। आप अभी शायद कल ही जॉब नहीं लिया होगा, किसी ने लास्ट महीने में लिया होगा, किसी ने 8 दिन पहले लिया होगा, लेकिन आप रिसेंट न्यू एम्प्लॉय हो, तो आपका पूरा काम शुरू होने के पहले आपको ये समझना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर क्यों हैं, वाई वी आर हियर, इसका इतिहास क्या है, किसने इसको बनाया है, किसकी प्रेरणा इसके पीछे है, कौन से प्रिंसिपल पर बना हुआ है, क्या क्या कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ क्या क्या हो रही है यहाँ पर जो बाहर नहीं होती, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आपको फिर कभी कभी अच्छा लगेगा कि मैं अच्छी संस्था में काम कर रहा हूँ। केवल ऐसा नहीं कि यहाँ पर तनख्वाह अच्छी है, बड़ी कंपनी है, सैलरी राइज करते हैं हमेशा हर महीने में, हर साल में, तो इट्स अ गुड कंपनी, ऐसा बोलते हैं ना। टाटा में काम करो, टाटा में काम खाली तनख्वाह के लिए नहीं करते हैं, उनको पता है टाटाज जो है वो ऑनेस्ट लोग हैं, लोगों को चीट नहीं करते हैं। उनका बिजनेस जो है वो बहुत बिजनेस करते हैं, लेकिन एक कुछ प्रिंसिपल्स के आधार पे करते हैं, हमको मालूम है। और रिलायंस का इतिहास सबको मालूम है, रिलायंस कैसे बिजनेस करता है ना। सो मार्केट में भी नाम कैसे बनते हैं, सब लोग पैसे बनाते हैं, ऐसा नहीं पैसे नहीं बनाते, लेकिन कंपनियां अलग अलग होती हैं, उनको पता है कि किस उसूल पर एक कंपनियां बनी हुई है। तो वैसे हमारा हॉस्पिटल भी किसी प्रिंसिपल पर बना हुआ है, और हमारा हॉस्पिटल में भी इंडिया में महाराष्ट्र में अनोखा हॉस्पिटल है ऐसा, जो कुछ तत्वों पर बना हुआ है, और उसको कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हम। हो सकता है अगर ये आदर्श लोगों को अच्छा लगेगा तो ऐसे कुछ चेंज तैयार हो जाएंगे आगे हॉस्पिटल में, जो हॉस्पिटल स्पिरिचुअल है, डिवोशनल है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ स्पिरिचुअल केयर है, इसमें ये सब काम चलते रहते हैं। अभी शालोम हॉस्पिटल नाम का हॉस्पिटल है यहाँ पर, हमारे हॉस्पिटल के मरीज जब फुल हो जाते हैं यहाँ पर, सबसे बड़ी समस्या आज की यही है हमारी, बेड्स नॉट अवेलेबल। तो क्या करना है फिर, लोगों को यहाँ ही आना है, लेकिन यहाँ पर बेड अवेलेबल नहीं है, आईसीयू बेड अवेलेबल नहीं है, पोस्ट ऑपरेटिव के लिए बेड अवेलेबल नहीं है। तो हमने फिर शालोम हॉस्पिटल से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, और हमारे हॉस्पिटल के पेशेंट जो जब बेड नहीं होते हैं तो ऑफिशियली हम लोग वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके मरीज आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, आपका स्पिरिचुअल केयर भी चालू करो ना हमारे पास। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, उनको पता है कि इसका लाभ है मरीजों के लिए। अभी आप, हमने कहा कि उसका भी एक्सपेंस होता है, तो उसका अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक्सपेंस होता है, लेकिन अल्टीमेटली बिजनेस बढ़ता ही है, गुडविल बढ़ती है। एक्सपेंस तो हम कर रहे हैं स्पिरिचुअल केयर में, कोई आपको इनकम नहीं उसके अंदर, लेकिन वो करने से मरीज को जो गुडविल हो रही है उससे क्या करेंगे आप, अपन मम्मी को भी लेके आएंगे बीमार पड़ेंगे तो, पापा को भी लेके आएंगे, भाई को भी लेके आएंगे, हस्बैंड को भी लेके आएंगे, बच्चे को भी लेके आएंगे। तो बिजनेस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, वो क्या बोले अच्छा एक्सपीरियंस आया था, ऊपर से थैंक यू बोलते हैं, आगे आएगा वो बताऊँगा आपको मैं। तो कुछ एटिकेट्स हैं हमारे, आप चाहे हिंदू हो, मुसलमान, क्रिश्चियन, किसी धर्म के हो, नो प्रॉब्लम्स, कोई हरे कृष्णा बनने की जरूरत नहीं आपको यहाँ पर आने के बाद, बनना चाहते हो तो बन सकते हो, वी आर मोस्ट वेलकम, विल ट्रेन यू वॉट एवर, लेकिन एक ही कंडीशन हमारी है, जो आपको हरे कृष्णा बोलना है, उतना मिनिमम हमारी एक्सपेक्टेशन है, जो हमारी संस्था का बेसिक एक कल्चर है। उतना अगर आपको उतना डिफिकल्टी है तो फिर आप जॉब नहीं ले सकते, लेकिन इतना तो आपको ज़रूर करना है। सेकेंड, सीनियर्स जब आते हैं तो आपको रिस्पेक्ट देना है, खड़े होकर हरे कृष्णा बोलना है। मॉर्निंग प्रेयर होती है 10 बजे होती है, अभी सुबह 7 बजे होती है फर्स्ट शिफ्ट की, जनरल शिफ्ट की 10 बजे होती है, सेकंड शिफ्ट की 2 बजे होती है, नाइट शिफ्ट की 9 बजे होती है। एक ड्यूटी की सब पहले एक प्रेयर होती है, आपको दिन में एक प्रेयर अटेंड करना है, वन प्रेयर, और एक प्रेयर में हम लोग 3 मिनट कुछ गाते हैं प्रेयर, और 5 मिनट उसके ऊपर बोलते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, वर्क शुरू करने के पहले अपना जो स्पिरिचुअल बैटरीज है उसको चार्ज करके जाना है 8 घंटे के लिए। उसके बाद में मेन एंड वीमेन, पुरुष और स्त्री के बीच में संबंध जो है यहाँ पर बहुत रेस्ट्रिक्टेड है। समझो आप किसी शादी में जाते हो, या किसी चर्च में जाते हो, या तो किसी मंदिर में जाते हो, तो वो जो मंदिर का, चर्च का, शादी का माहौल है, वो आप जज कैसे करते हो किस लेवल का है, मैंने आइडिया? वो जिस कम्युनिटी की शादी हो रही है, मारवाड़ी कम्युनिटी की शादी हो रही है, गुजराती की हो रही है, साउथ इंडियन की हो रही है, या तो क्रिश्चियन की हो रही है, या तो मुसलमानों की शादी हो रही है, आप जज कैसे करते हो उनको, ये कौन से लेवल के लोग हैं? ड्रेस कोड एक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो ड्रेस, कैसे कपड़े पहन के लोग आए हैं, हाफ नेकेड आए हैं कि कैसे टाइट पहन के आए हैं, कि ढंग से आए हैं, कवर करके आए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट उससे भी ऊपर का मन में क्या है, मैन एंड वीमेन कैसा बिहेव कर रहे हैं उसके साथ में, उस पर लोगों को जज करते हैं। चर्च में जाओ, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, ऑफकोर्स मस्जिद में लेडीज जाते नहीं, लेकिन जहाँ पर भी स्पिरिचुअल गैदरिंग हो या कोई शादी की गैदरिंग हो, लोग देखते हैं कि अरे बहुत लूज लोग है ये, इनका बिहेवियर देखो कैसे आदमी औरत बात कर रहे हैं। वैसे भी स्पिरिचुअल कम्युनिटीज़ में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है, हाउ मैन एंड वीमेन बिहेव विथ ईच अदर। आपकी संस्था में, हमारे संस्था में भी अगर रिसेप्शन काउंटर पर बैठे हो, 2 पुरुष काम कर रहे हैं, 2 स्त्रियाँ काम कर रहे हैं, अभी ज़्यादा पेशेंट नहीं है, ऐसे बैठे हुए हैं, मरीज भी कुछ वेट करके डॉक्टर के लिए और देख रहे काउंटर पे क्या हो रहा है, वो जो कुछ हो रहा है उस पर वो आपको जज करते हैं कि इनका कल्चर क्या है संस्था का, आपको देख रहे हैं आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आपके बाल कैसे रखे हैं आपने, किस प्रकार का कपड़ा पहना है आपने, व्यवहार कैसे कर रहे हो, जब फ्री काम नहीं है आपको, फ्री में बैठे हो, उससे लोग आपको जज करते हैं। तो इसलिए बहुत स्ट्रिक्टली हमारे हॉस्पिटल में डे 1 जब हमने हॉस्पिटल शुरू किया 11th जनवरी 1998, तब से हमने किसी भी कीमत पर पुरुष और स्त्री के बीच में कोई लूज बिहेवियर अलाउ नहीं किया है, और जो भी यहाँ पर हुआ है मिसबिहेवियर उसको ऑन द स्पॉट नेक्स्ट डे इन्वेस्टिगेट कर दिया है, और ये अभी तक भी चालू है। रिसेंटली भी 2-3 महीने के पहले इसी वजह से लोगों को हमने निकाल दिया। ये एक ऐसी चीज़ है हमारे पास, नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमारी, क्योंकि इससे हमारी आध्यात्मिकता को, डिवोशनल एटमोसफेयर को बहुत बड़ा धक्का पहुँचता है। आप कह रहे हो आप हरे कृष्ण हो, हाँ ड्रेस कोड है, ये ऐसा है वैसा है, हरे कृष्ण बोलना है, म्यूजिक लगा के रखी है, गुरुजी का मूर्ति रखा है, सब जगह फोटो रखे हैं, लेकिन औरतों का व्यवहार देखो कैसे आदमियों से, ये कैसा हरे कृष्ण का मंदिर है, क्योंकि मंदिर में देखते हैं वो हरे कृष्ण मंदिर में कैसे रहते हैं लोग, क्या पहनते हैं, कैसे बात करते हैं। तो वो अगर आपको स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करना है तो ये कल्चर जो है लेडीज़ और जेंट्स का उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। काम के समय भी जितना संबंध रखना है उतना रखना है, उसके अलावा जाकर लूज बिहेवियर नहीं होना चाहिए। इसीलिए ड्रेस कोड भी रखा है, जितना कवर्ड बॉडी होगी उतना वातावरण शांत रहता है, जितना बॉडी एक्सपोज होती है उतना वातावरण डिस्टर्ब रहता है, संस्था के अंदर भी फिर लफड़े होते रहते हैं, रिलेशनशिप होते रहते हैं, अनवांटेड एक्टिविटीज होते रहते हैं। तो हमारे हॉस्पिटल में शुरू से हमने रखा है कि ये हॉस्पिटल लव अफेयर करने की जगह नहीं है। बार बार हम दोहराते हैं कि हम लोग यहाँ पर मरीजों की सेवा करने के लिए आते हैं, तो आपका ड्रेस कोड, आपकी हेयर स्टाइल, आपका बात करने का तरीका, आपका काम करने का तरीका, इसमें से एक ही बात प्रकट होनी चाहिए कि वी आर हियर टू सर्व द पेशेंट, किसी भी कीमत पर। इसके अलावा कोई मैसेज आपके व्यवहार से, आपके ड्रेस कोड से लोगों को नहीं मिलना चाहिए। कॉन्स्टेंटली वी हैव टू रिमाइंड आवर सेल्फ कि वी इस इज अ हॉस्पिटल, द स्पिरिचुअल हॉस्पिटल, एंड वी आर हियर टू सर्व द पेशेंट्स। आई एम नॉट हियर टू शो माई हेयर स्टाइल, माई ब्यूटिफुल हेयर, माई ब्यूटिफुल बॉडी, माई स्मार्टनेस, मेरा हैंडसम ब्यूटिफुल जो रूप है उसको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर नहीं हैं। उसके लिए बहुत जगह है, मैरिज है, फंक्शंस है, पार्टीज़ है, पिकनिक्स है, वहाँ पर अपना जो भी फैशन करना है आप कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप काम का सवाल है, अगर ये हॉस्पिटल स्पिरिचुअल भी नहीं भी होता तो भी मरीजों की सेवा के लिए होता ना कि नहीं होता? दैट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। स्पिरिचुअलिटी उसके बाद में डेवलप होती है, लेकिन बेसिक हम लोग हॉस्पिटल खोल के बैठे, मतलब हॉस्पिटल का नाम दिया है भक्ति विधान, तो हॉस्पिटल ऐसा नहीं कि भक्ति विधान रिसॉर्ट्स, ऐसा नहीं लिखा नहीं इधर। इसका मतलब ये है कि यहाँ के जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो क्लेम करते हैं कि आप दर्दी हो, दर्द लेके आओगे, हम आपका दर्द निवारण करेंगे। ये आपने एक अलिखित अनअनाउंस्ड नाम के माध्यम से लिख के रखा है इधर कि वी आर हियर टू सर्व यू। तो वहाँ अंदर आने के बाद में वो आपका व्यवहार उसका अलग दिखना नहीं चाहिए। इसलिए स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड, स्ट्रिक्ट हेयर स्टाइल, अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपके पढ़ा होगा सब लोग ने, पेपर सबको दिया है ना आपको, एवरीबडी हैज रेड, कैसा ड्रेस, कितना हाथ लंबा होना चाहिए, कितना टॉप कितना लंबा होना चाहिए, बाल कैसे रखना है, ये सब कुछ डिटेल में लिखा है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई ग्रे एरिया, कोई कन्फ्यूजन पैदा नहीं किया उसके अंदर, एकदम क्लियर है आपको क्या करना है। तो वी रिक्वेस्ट यू कि हमारा जो डेकोर है जो हमने इतनी मेहनत से बनाया है, 20 साल होने को आएंगे उसको भी, वो आप बनाए रखिए। अगर आपको ये दिल से पसंद नहीं है, आई डोंट जस्ट लाइक इट, प्लीज़ डोंट वर्क हियर, वी आर नॉट फोर्सिंग यू, वी आर वेरी क्लियर, वी आर वॉट वी आर, हम लोग जो है वो एकदम क्लियर है, हमने कोई लुका छुपी नहीं किया है कि हम लोग क्या है, कुछ छुप छुप कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें जो हमको पता नहीं है, कुछ लोगों को बता दी गई, ऐसा नहीं है। ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, इंडक्शन प्रोग्राम, ताकि हमारी सच्चाई और एक्चुअल जो हम लोग हैं उसका पूरा आपको पता चलना चाहिए। कोई शॉक्स देने का प्लानिंग नहीं इसके अंदर, इंटरव्यू होने के पहले भी बताते हैं हम लोग क्या है, यू आर अनकम्फर्टेबल, प्लीज़ डोंट वर्क हियर। जैसे कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि वो ना किसी मूर्ति को लगाया हुआ अन्न है ना वो नहीं खाते हैं, है कोई धर्म ऐसे बहुत सारे, वी रिस्पेक्ट दैट, पर हम उनको बताते हैं शुरू में ही कि हमारे यहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा नाम के भगवान के लकड़ी के विग्रह हैं, जो मंदिर में भी है और रथ में भी है और किचन के अंदर भी एक अलग मंदिर है उनका ही, तो अलग एक मूर्ति है वहाँ पर है, इनको हम लोग प्रसाद मतलब खाना जो है अर्पण करते हैं, तुलसी रख के घंटी बजाते हैं, मंत्र बोलते हैं और अर्पण करके उनका प्रसाद जो है वो हम भी खाते हैं, मरीजों को भी देते हैं, स्टाफ को भी देते हैं, तो पहले ही बताते हैं। अगर आपका धर्म इसको नहीं मंजूर करता तो फिर यू डिसाइड। हमारे यहाँ पे मिनिमम हरे कृष्णा सबको बोलना होता है, हमारे यहाँ पे फेस्टिवल होते हैं, हमारे यहाँ पे ये कीर्तन चलते रहता है, हमारे यहाँ पे ये मूर्ति है, सब फोटोग्राफ्स है, ये सब कुछ हम उनको बताते हैं, ताकि आपको ज्वाइन करने के बाद शौक नहीं होना चाह रहे, मैं तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे पता नहीं था ये, आई डोंट लाइक दिस एंड आई कांट, मैं बहुत सफोकेट हो रहा हूँ, तो शुरू से बता देते हैं। जैसे आप अभी जे जे हॉस्पिटल में जा रहे हैं, जेएसवी का एक कल्चर है, उसका एडमिशन क्राइटेरिया है, उसका मार्क्स है, उसकी फीस है, कॉलेज का कल्चर है, जो भी कुछ है, अगर आपको पसंद है तो एडमिशन ले लो, नहीं तो कोई और कॉलेज ढूंढो, सिंपल राइट। वी आर व्हाट वी आर इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये पर्पज यही है कि आप ये सब पेपर्स पढ़े ठीक से और समझें, और कभी हमको ये मौका नहीं मिलना चाहिए आपको बताने का, मैडम आपका हेयर स्टाइल ठीक नहीं है, मैडम आपका ड्रेस ठीक नहीं है, मैडम सर आपका शर्ट पैंट बराबर नहीं पहने आपने, ऐसा हमको मौका ही नहीं मिलना चाहिए। आप फॉलो ऐसे करो कि हमको कभी आपको दंड देने का, करेक्ट करने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए। स्टिल जब हम करेक्ट करते हैं तो हम लोग गुस्से से करेक्ट नहीं करते, आपको समझाते सर आप आज आपका महीना भर तो ठीक था आपका, आज थोड़ा सा आपका गड़बड़ है, थोड़ा ये नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। शुरू से आपको बोलेंगे नहीं गेट वहाँ पर है ऐसा बताते नहीं है, आपको मौका देंगे इम्प्रूव करने का। नहीं अगर इम्प्रूव कर रहे हैं आप तो फिर आपको मेमो देंगे, ज़रूर देंगे। आप इस सब के लिए अपनी जानकारी रखिए इसके बारे में, ताकि कभी ऐसा मौका ना आए कि आपको इसी की वजह से निकाला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे पास एक तत्व है कि यहाँ पर बेफजूल की बातें कोई नहीं करता और ना करना चाहिए, काम में अपना ध्यान होना चाहिए, उसके अलावा कोई टाइम पास का बात, टाइम पास की बातें, नॉनसेंस बातें, यूजलेस बातें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। हाँ अभी ए क्या है काल भेट ली नहीं तो वो क्या टी वी पर भी प्रोग्राम होता तो संध्या का डर होते आ ले नहीं तो मी क्या है, ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन समवेयर। ओटी में बात करते हैं, इनसाइड दी ऑपरेशन थिएटर लोग बात करते रहते हैं, दे ऑल टॉक ऑल नॉनसेंस थिंग्स। तो हमारे स्पिरिचुअल कल्चर और एटमोसफियर में फ़र्क पड़ता है इससे, इसलिए वी डोंट अप्रिशिएट दैट नॉनसेंस इरिलेवेंट फ्रिवलस टॉक्स, उच्छृंखल बातें, बेफजूल की बातें हम लोग एनकरेज नहीं करते यहाँ पर। और स्पिरिचुअल प्रोग्राम जो होते हैं ड्यूटी पर, ऑन ड्यूटी होते हैं, दुनिया में कहीं भी ऑन ड्यूटी कल्चरल प्रोग्राम नहीं होते हैं स्पिरिचुअल प्रोग्राम नहीं होते हैं, हमारे यहाँ पर ऑन ड्यूटी जप का कार्यक्रम होता है, ऑन ड्यूटी प्रवचन होते हैं, ऑन ड्यूटी फेस्टिवल होते हैं, कोई ऑफ ड्यूटी नहीं होता है, उसमें आप भाग लीजिए। और यहाँ पर सन्यासी लिखा है, मैं तो कहूँगा सन्यासी, चर्च के फादर्स, मस्जिद के मुल्ला और किसी धर्म के जो अधिकारी होते हैं वो हमारे यहाँ पर बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं, क्योंकि हम लोग उनको एनकरेज करते हैं, कोई आपके धर्म के, कोई चर्च के बिशप हो, कोई मंदिर के गुरु हो, उनको बुलाइए आप, तो आते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो सबका आदर करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है मेरे साथ कोई सन्यासी आता है गेस्ट के रूप में, उसको लेकर घूमते रहता हूँ, तो स्टाफ खाली मुझे ही विश करते हैं, उनको विश नहीं करते हमको ये समझना चाहिए कि जिसको आपके सर लेके जा रहे हैं उनको भी आपको विश करना चाहिए, क्योंकि हम उनके साथ हॉस्पिटल के गेस्ट हैं। हाँ कोई स्पिरिचुअल लीडर है, कोई रिलीजियस आदमी है, चर्च से आया होगा। दूसरा है साइलेंस। अभी हॉस्पिटल में या किसी भी जगह पर साइलेंस को नाश करने वाला कौन सा चीज़ पैदा हो गया है? हाँ मोबाइल्स, सब लोग अपनी दुनिया को खो जाते हैं, भूल जाते हैं जब मोबाइल पे बात करते हैं, वेयर दे आर स्टैंडिंग विच प्लेस। हाँ घर पे खड़े हैं, हॉस्पिटल में खड़े हैं, आईसीयू के बाहर खड़े हैं, किधर खड़े हैं मालूम नहीं पड़ता। एक बार 78% आपका अटेंशन जो है ना उसके अंदर एंगेज होता है, साइंस का रिसर्च है, 78% अटेंशन इज एंगेज इन मोबाइल टॉक। यू डोंट नो हाउ लाउड यू आर टॉकिंग एंड हाउ लॉन्ग यू आर टॉकिंग, यू डोंट अंडरस्टैंड। आप बोलेंगे ना कितनी जोर से बात करते हैं आप, नहीं मैं तो नहीं ठीक से बात कर रहा हमको समझ में नहीं आता इतना हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है उसके अंदर। तो आप लोगों को सबको अधिकार है लोगों को बोलने का, सर हॉस्पिटल है ये, आपका मरीज है, एडमिट है, आपको साइलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, अगर कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है सर आप बाहर जाके बात करके लौट के आइए। उधर ही आईसीयू के बाहर वेटिंग एरिया में, उधर ही पेशेंट के वेटिंग एरिया में जोर जोर से कितना शेयर क्यों गिरा, वो बेचा क्यों नहीं टाइम पे तुमने, मुझे तुमने फ़ोन किया था मैंने, तुमने सुना क्यों नहीं मेरी बात, ये सब बातें हॉस्पिटल में होती रहती है। तो हम लोग जाके उनको सर एक्सक्यूज़ मी आपको ज़रा धीरे बात करना है, आप हॉस्पिटल में बैठे हो। सबको अच्छी तरह से सबको बोलना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी एडमिन के कुछ लोगों का काम है ये। जहाँ जहाँ आप काम कर रहे हो, जहाँ पर नॉइज़ होता है, आप लोगों को बोलना चाहिए। और एक हॉस्पिटल में कंप्लेंट होती है कि डिलक्स रूम के अंदर पेशेंट दरवाज़ा बंद करके अंदर रहते हैं, फिर भी नर्सिंग काउंटर पर जो बातें चल रही हैं उनको सुनाई पड़ती है, इतनी ज़ोर ज़ोर से बातें करते हैं। आउटसाइड द रूम जहाँ पर नर्सेस स्टाफ लोग बैठे हुए हैं जो जोर से बात करते हैं, उनको रेस्ट करने में डिस्टर्ब होता है। तो हमारे तरफ से या किसी भी तरफ से डिस्टर्बेंस नहीं पैदा होना चाहिए यहाँ पर, जितना शांति रहेगा उतना मरीज जल्दी अच्छा हो जाएगा। तो साइलेंस को रखना भी हमारे हॉस्पिटल का एक इम्पॉर्टेंट कार्य है, सब लोगों को हाथ हाथ बटाना है उसके। ऐसा नहीं कि वो जिन्हें से कोई स्टाफ जा रहा है वो दो मंजिल पर कोई स्टाफ ऐसे आ रहा है तो ऊपर से नीचे बातें हो रही है, अरे तू वर्ती आली करने तू, मैडम ने तो बोलो ले, यहाँ से क्रॉस टॉकिंग यू नो, उससे क्या होता है कि बातें ऐसे करनी चाहिए कि जिससे बात कर रहे हैं उसको ही सुनाई पड़ना चाहिए, जिससे आपको कम्युनिकेट करना है उसको ही सुनाई पड़ना चाहिए, सब दुनिया को सुनने की कोई जरूरत नहीं, साइलेंस। और ये जो कीर्तन है ना, आपने सुना होगा ना सब हॉस्पिटल में, ये हमारे हॉस्पिटल का लाइफ लाइन है, ये बहुत कीमती चीज़ है। हॉस्पिटल बंद भी हो गया था ना बीच में एक बार, बहुत साल पहले, तभी भी सब बंद था लेकिन ये चालू था, ये हमारी बिल्डिंग की जान है एक्चुअली, दिस इज द लाइफ ऑफ आवर बिल्डिंग, तो किसी भी कीमत पर उसको बंद नहीं होना चाहिए। बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि आपको काम में डिस्टर्ब हो, आपके पेशेंट और उसके कन्वर्सेशन के अंदर भी डिस्टर्बेंस हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट कभी भी जब यहाँ पर अभी मेरा क्लास ख़त्म होगा तो तुरंत ऑन हो जाएगा, मैं ऑफिस में बंद कर घर जाता हूँ, अंदर कीर्तन ऑन होता है, क्योंकि वो भगवान का नाम जो है ना वो वातावरण को शुद्ध करता है, पवित्र करता है, भूत प्रेत पिशाच जो है वो अनवांटेड एलिमेंट्स उसको भगा देता है, वो एक विश्वास कॉन्फिडेंस निर्माण करता है, डर को भगा देता है वो। तो शुरू से जब से 98 को खुला हॉस्पिटल तब से ये ऑन है, उसमें सिस्टम है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, और 200 प्लस स्पीकर्स पूरे हॉस्पिटल में फैले हुए हैं, रूम्स के अंदर, कॉरिडोर के अंदर, वार्ड के अंदर, सब जगह फैले हुए हैं। उसको ऑन रखना ये हमारा भी काम है, आपने भी रात को कम कर दिया या बंद हो गया तो सुबह आए तो बंद ही है, तो आपको लगना चाहिए कुछ मिसिंग है। लिफ्ट के अंदर भी भगवान का नाम चलता है हमारा, इसलिए हम जब बाहर जाते हैं ना किसी हॉस्पिटल में तो हमको कुछ ऐसा लगता है समथिंग इज मिसिंग हियर, सुकल्या चुकल्या सारखं वाटतं कुठे गेल्यानंतर, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में हमको आदत हो गई ना, अभी जहाँ जाएंगे वहाँ पर वो प्रभुपाद जी की आवाज़ में भगवान के नाम सुनने की हमको आदत हो गई। लिफ्ट में गए तो बंद हो गया, लिफ्ट में बंद क्यों है, पूछते वॉचमैन को क्यों बंद है, नहीं सर वो नीचे से बंद हो गया, चालू करते हैं इसको, तो आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है यहाँ पर, तो ये हमको समझना यहाँ पर ज़रूरी है। लास्ट में लिखा है यहाँ पर ट्रीटिंग द पेशेंट एज अ सोल। जब आईसीयू में पेशेंट बेहोश होता है, कभी कोमा में होता है, या ओटी में उसको बेहोश कर देते हैं फॉर सर्जरी करने के लिए, दोनों स्थिति में हम देखा है जैसे पेशेंट कोमा में जाता है या कोमा में हम उसको डालते हैं या तो अनकॉन्शियस कर देते हैं, तुरंत बेफजूल की बातें लाइट टॉक शुरू हो जाती है। जब तक मरीज होश में है तब तक सब लोग शांत रहते हैं, एक बार उसको 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5 हो गया उसका और वो अनकॉन्शियस हो गया, तुरंत चालू नॉनसेंस लाइट लूज टॉक्स चालू हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी पेशेंट स्पाइनल में होता है, वो सेडेशन में होता है, उसको एंग्जाइटी में नींद नहीं आती, जगह रहता है, वो ऑपरेशन चल रहा है या लेडीज़ का या तो सीजन चल रहा है, स्पाइनल एनेस्थेसिया में है, तो वो जगह रहते हैं एंग्जाइटी की वजह से, और वो सारी डॉक्टर नर्स की बातें सुन लेते हैं और समझते हैं कि हम लोग कितने स्पिरिचुअल हैं, है ना, दे अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ टॉक्स यू आर हैविंग, उससे आई अंडरस्टैंड कि आप लोग कितने स्पिरिचुअल हो। मेरे पास कई कंप्लेंट्स भी आए हैं, डॉक्टर्स टॉकिंग नॉनसेंस टू नर्सेस आफ्टर पेशेंट इज एनेस्थेसिया, तो मैंने डॉक्टर को बुला के बताया सर आप डॉक्टर हो, मरीज चाहे बेहोश हो या होश में हो वो है वहाँ पर, उसका इज्जत करना आपका कर्तव्य है, इजी अनकॉन्शियस और व्हाट और कॉन्शियस स्टिल, अगर आपकी मम्मी वहाँ पर होती तो आप कैसे बिहेव करते, तो मम्मी एनेस्थेसिया अंदर है या मम्मी आईसीयू में कोमा में है तो कैसे बिहेव करेंगे आप, अलग करेंगे क्या, नहीं करेंगे, मोर केयरफुल यू विल बी ना टू बिहेवियर, या कि आईसीयू में समझो पेशेंट डेड हो गया है, आईसीयू क्यूबिकल नंबर 8 पेशेंट डेड, उसको बॉडी पैक हो रही है और काउंटर पे स्टाफ और डॉक्टर हा हा चल रहे हैं, तो लोग बोल रहे क्या स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है, किसी की डेथ हो गई है बॉडी पैक हो रही है, डॉक्टर नर्स बोल रहे हंस रहे जोर जोर से, क्या बोल रहे हैं, तो रोज का है, अरे रोज का तुम्हारे लिए है, उसके लिए तो एक ही बार 100% डिफिकल्टी में है वो, उसके पापा की डेथ हो गई है, उसके लिए अलग वातावरण है, वो रोज का वातावरण नहीं उसके लिए, उसके पापा एक ही बार गुजर गए, अभी पहली बार गुजर गए, वो बार बार गुजरने वाला नहीं उसको आदत बनाने के लिए, तो हॉस्पिटल मतलब यू बी सेंसिटिव टू दिस, चाहे रोज का है यहाँ पर, रोज बुखार है, रोज ऑपरेशन है, रोज सर्जरी है, रोज डिलीवरी है, रोज डेथ है, रोज आईसीयू है, रोज का है ये, हाँ लिवर फेल्यूर एंड ब्रेन डेड, ये रोज का है यहाँ पर, सो वॉट, मरीज के हिसाब से वो उसके लिए एक ही बार हो रहा है, वो बेहोश हो रहा है उसको देख के, मम्मी डेथ हुआ तो कोई गिर जाता है यहाँ पर, आप बोला क्या है, रोज का है ये हमारे लिए, तो वी शुड नॉट बिहेव लाइक दिस, शुड बी वेरी केयरफुल, मरीजों का आदर रखते हुए हमको व्यवहार करना है। कुछ चीज़ यहाँ पर कॉमन दिखती है, ये देखो जप की माला है ना, ये कॉमन दिखता है यहाँ पर, तिलक, फिर धोती कुर्ता मैं जब आज पहन के आया हूँ, कंठी माला, औरतों की साड़ी, बीड्स, बैग, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक माला होती है, बहुत लंबी होती है, अगर वो खुले रखेंगे तो पता नहीं ज़मीन पे पहुंच जाएगी, तो गंदी हो सकती है, वो कहीं लगेगी गंदगी में, तो इसलिए कुछ थोली में रखते हैं और अंदर उसके हाथ डाल के जप करते रहते हैं जब भी समय होगा। आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए, सबको ऑन ड्यूटी जप करना मना है। हाँ, ये हम लाते हैं फ्री टाइम मिलेगा तो, लेकिन ऑन ड्यूटी किसी को भी यहाँ पर जप करने के लिए मना है। जब आपको घर पे करके आना है, घर जाके करना है, लेकिन फिर भी बाहर के लोग आते हैं डिवोटीज यहाँ पर, तो ये पहने रहते हैं, आपको लगेगा क्या है ये, इसके अंदर ये क्या है पता है आपको? ये काउंटिंग बीड्स हैं, कितनी माला हो गई, दो माला हो गई तो दो मणि नीचे कर दी, तीन चार पाँच छः, ऐसे 20 उसके अंदर मणि होते हैं, तो हमारा काउंट रहता है कि मेरा कितना हो गया आज और कितना बाकी है, मेरा 14 हो गया है, अभी दो बाकी हैं, दिन में हो जाएगा, शाम तक, शाम में ड्यूटी के बाद में हो जाएगा, लेकिन मॉर्निंग में सब करके आते हैं। तो वैसे भी ये पता है क्या है, इसको शिखा कहते हैं, हाँ उसको लोकल लैंग्वेज में शेंडी कहते हैं, चोटी कहते हैं उसको, लोगों के मजाक का विषय है ये, लेकिन उसका मीनिंग क्या है पता है आपको? ये दीक्षा लिए हुए एक शिष्य का चिन्ह है, वो इट्स अ सिंबल ऑफ अ डिसाइपल ऑफ अ गुरु, वन हु हैज टेकन इनिशिएशन और दीक्षा फ्रॉम अ गुरु, और उसको भी हम लोग गांठ मार के रखते हैं, क्योंकि ये भी लंबा होता है, ये अभी खोड़ेंगे तो इधर तक आएगा, बांध के को रखते हैं, उसी कारण के लगते हैं, जैसे आप लोगों को बोला है ना कि बालों को बांध के रखो, उसी कारण से हम भी बांध के रखते हैं उसको, क्योंकि जितना वो खुला रहेगा ना उतना हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, इसलिए कभी भी हम उसको ऐसा खुला छोड़ के नहीं आएंगे, ऐसा यहाँ तक लंबा ऐसा यहाँ तक खुला छोड़ कभी भी नहीं आएंगे, उसको हमेशा गांठ बांध के रखेंगे, वो स्पिरिचुअल एनर्जी का स्रोत है, और गांठ मार के रखेंगे तो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी इंटैक्ट रहेगी आपके पास, डिसिपेट नहीं हो जाएगी, डिस्चार्ज होता है ना मोबाइल का, सब होता है डिस्चार्ज होता है, ऐसा डिस्चार्ज नहीं होगा। और एक शिष्य के लिए गर्व की बात है ये सिंबल रखना, हाँ तो ये सब आपको हॉस्पिटल में कॉमन दिखाई पड़ेंगे। एटमॉस्फेयर प्योर करने की बात चल रही थी पहले, तो 24 घंटा जो कीर्तन चल रहा है वो एक हमारा मेथड है इसको प्योर रखने का, टू कीप द एटमॉस्फेयर प्योर एंड सैंक्टिफाइड एंड डिवोशनल, वन ऑफ द मेथड इज टू रन 24 आवर कीर्तन टू स्पीकर्स। दूसरा यहाँ पर खाना, सबको खाना है दिन में, ब्रेकफास्ट लंच देना है, तो यहाँ का कोई भी खाना जो है वो नॉनवेज नहीं है, हत्या करके पैदा होने वाला कोई भी अन्न यहाँ पर नहीं आता, हत्या के बाद में होता है ना पैदा नॉनवेज, वो यहाँ पर नहीं आता, तो जो भी आता है वो वेज आता है, और जो भी आता है वेज बनता है, भगवान को हम लोग भोग लगाते हैं और प्रसाद के रूप में खाते हैं उसमें, कोई भी अन्न, बिस्किट हो, वेजिटेरियन हो, कुछ भी हो, बिफोर विदाउट ऑफरिंग गॉड वी डोंट ईट। एम्बियंस देखिए, और एक प्योर एटमॉस्फेयर का लक्षण है वो, उसमें कहीं भी प्रभुपाद प्रभुपाद राधा गोपीनाथ अमिताभ बच्चन अश्मित क्या नाम उसका, हाँ ऐसे कुछ फिल्म स्टार का नाम था, तो क्या होगा जैसे आप देखोगे तो आपको उसका विचार मन में आएगा, इनको देखेंगे इनका विचार मन में आएगा, इनको देखेंगे इनका विचार मन में आएगा, सडनली अमिताभ बच्चन का आएगा तो उसका विचार मन में आएगा। रोड पे क्या होता है, ड्राइविंग कर रहे हैं तो तुरंत एक एडवर्टाइजमेंट, रेफ्रिजरेटर, कोई हीरोइन खड़ी है रेफ्रिजरेटर बेच रही है, फिर टीवी आएगा, फिर कोई और हीरो आएगा मोबाइल बेच रहा है, कोई टैबलेट बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आपको क्या कर रहे हो, आपके विचार को उधर ले जा रहे हैं, ये आपके विचार लो इसके बारे में सोचो, ये विचार लो इसके बारे में सोचो, ये आपको देखना है, ये आपको नई फिल्म आ रही है, नई सीरियल आ रही है, ये इस टीवी पे आ रहा है, तो आपका मन का विचार जो डिस्ट्रैक्ट करते करते जा रहे हो, तो हम लोग भी वही कर रहे हैं, आपके मन के विचार को खींच खींच के भगवान के ऊपर ही लेके आ रहे हैं, तो बीच में कोई गैप में भी गैप है, लेकिन उसमें अमिताभ बच्चन या तो महात्मा गांधी या तो और कोई शाहरुख खान नहीं है उसके अंदर, बीच में इट्स वन थॉट इज एवरीवेयर, वेर एवर यू सी यू विल रिमेंबर गॉड ओनली, एम्बियंस। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो दीवार पर लटकती हुई नजर नहीं आती आपको, दीवार पर फोटो लटकाया आपने, स्पीकर में आवाज़ सुनाई पड़ रहा है, लेकिन ये जो पीले रंग में लिखा है ना, नो पॉलिटिक्स, ये आपके अंदर होता है। और पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? यस
पॉलिटिक्स
हाँ, ते चला भाषांतर मैं अर्थ विचार कर अर्थ मैं प्रगति करूंगा, नहीं नहीं मैं प्रगति नहीं करूंगा, लेकिन आपको नहीं करने दूंगा, ये पॉलिटिक्स। और समय पड़ेगा तो आपकी छाती पर पांव रख के भी आगे चला जाऊंगा, आई विल नॉट केयर, दैट इज पॉलिटिक्स। और झूठ मूठ का वातावरण निर्माण करना, झूठ का रिपोर्ट देना, गॉसिप करना, ईर्ष्या करना किसी के ऊपर, ये क्यों एडमिन मैनेजर बने हुए हैं, मैं क्यों नहीं, मैं ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ वगैरह वगैरह, ये पॉलिटिक्स जो है ना वो वातावरण को वो जल्दी ख़राब कर देता है। अब कितना भी स्पिरिचुअल बनाएंगे उसको, लेकिन पॉलिटिक्स ना हम लोग ही लाते हैं उसके अंदर। हमने कितना भी प्रयास किया होगा, इंडक्शन दिया होगा, ये प्रोग्राम दिया होगा, ये ट्रेनिंग दिया होगा, वो सेशन लिया होगा, हर बार ओरिएंटेशन दिया होगा आपको, लेकिन पॉलिटिक्स को लाना या जाना ये आपके हाथ में है। तो इसलिए कभी भी अगर पॉलिटिक्स से आपको बचना है तो एक ही उसका उपाय है, वो ये है कि मेरे भाग्य में जो लिखा है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। इस पर आपकी श्रद्धा होगी तो कोई पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है। आपको जो मिलना है वो आपसे कोई भी शक्ति दुनिया की छीन नहीं सकती। जो आपको मिलना है वो मिलेगा ही, और जिस समय में मिलना है तभी मिलेगा, वो समय से पहले और आपके भाग्य से ज़्यादा आपको कभी भी नहीं मिलेगा, और कोई छीन नहीं सकता उसको, कोई रोक नहीं सकता उसको। अगर आपको मिलना है तो मिल के ही रहेगा वो आपको, क्योंकि आप लोगों के अलावा उसके ऊपर एक शक्ति काम कर रही है उसके ऊपर, जिसकी तरफ से आपको उसका लाभ मिल रहा है। जो भी आपके कर्म हैं आपको उसका लाभ मिलेगा। आप कोई ईर्ष्या करके, झगड़ा करके, द्वेष करके, जेलसी एनवी करके कोई फायदा नहीं है। ये अगर आपको श्रद्धा है कि आपका नसीब कोई छीन नहीं सकता है तो आप पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। तो लगता है कि मैं कुछ करूँगा तो मेरी प्रगति होगी, प्रमोशन होगा, पगार बढ़ेगा, फिर बॉस को पटाऊँगा, कुछ करूँगा, ये करूँगा, ऐसा आपको लगता होगा तो बड़ी गलत फहमी है। कभी ना कभी आप नाक पे गिरेंगे इस बात में। इसलिए श्रद्धा रखो भगवान पे, अच्छे काम करते रहो और आगे बढ़ते रहो। आपका भविष्य आप ही बनाते हो और आपका भविष्य कोई छीन नहीं सकता है आपसे। आगे लिखा है स्क्विरल एटीट्यूड, कोई भी काम ऊंचा और नीचा नहीं होता है, काम करने की भावना ऊंची और नीची होती है। भगवान की दृष्टि से आप क्या काम कर रहे हो वो इम्प्रेसिव नहीं होता है, आप कैसे कर रहे हो वो ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है। क्योंकि भगवान जो है ना वो किसी भी काम के अंदर किस भाव से किया है, उसका इंटेंशन क्या था, उसको देखते हैं हमेशा। उसका नाम क्या है, भावग्राही। भावग्राही का मतलब जो भाव उसके अंदर है ना काम के पीछे, उसको वो ग्रहण करते हैं। वो आप डॉक्टर हो या आप मैनेजर हो या डायरेक्टर हो या ट्रस्टी हो, वो देखकर वो इम्प्रेस नहीं होते हैं। लेकिन आप अपना काम कैसे कर रहे हो, अगर आप डायरेक्टर हो तो आपको रस्ते पर पड़ा हुआ कचरा उठाने में संकोच है कि नहीं है, ये वो देखते हैं। आप सोचते हो कि ये तो चपरासी का काम है, मैं क्यों करूँ। कोई भी काम ऊंचा और नीचा नहीं होता है, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर कोई भी काम करने को हमको तैयार होना चाहिए। ये मेरा काम नहीं है ऐसा कभी बोलना नहीं चाहिए। यू डू द नीडफुल। घर में जब भी मैं अभी डायरेक्टर हूँ हॉस्पिटल का, घर में जाता हूँ तो कभी कोई बाई नहीं आती, समझो दो दिन के लिए बाई नहीं आ रही है, बाई की लड़के की शादी है, गाँव चली गई, तो डायरेक्टर साहब भी बाथरूम साफ करते हैं, लेटरिन साफ करते हैं, कुछ सब्जी भी काट के देते हैं, सब्जी ला के भी देते हैं, अपना अपना रूम भी क्लीन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पर होता है कि अपना घर है, मेरे घर में बाथरूम साफ करने में प्रॉब्लम क्या है। ऊपर से आप बाथरूम साफ करेंगे तो मिसेस आएगी और इंस्पेक्शन करेंगी, मतलब वो कोना साफ नहीं किया है, तो हम दरवाज़ा बंद करते हैं, वो कोना भी साफ करते हैं, फिर आते हैं हाँ अभी ओके हैं, है ना। इसको बताता नहीं, बता रहा हूँ मैं आपको। तो उसमें संकोच होने की जरूरत कोई जरूरत नहीं है। कोई कहा नीचा काम नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर कोई झाड़ू उठा के साफ किया तो कोई डिग्रेडेशन थोड़ी हो गया। समझो आप अभी आप आई टेल यू वन थिंग, अगर आप हॉस्पिटल में आते हो 9 बजे, कार्ड पंच किया आपने, मंदिर में गए, भगवान को प्रणाम किया और बाहर आ रहे हैं, और आपको लगा कि बाथरूम में जाना चाहिए, दूर से आए हो, और बाथरूम में जाएंगे कोई प्रभु जी और मुझे देखेंगे या डॉक्टर संकेत को देखेंगे कि टॉयलेट क्लीन कर रहे हैं, समझो आप देख रहे हैं कि डॉक्टर संकेत टॉयलेट क्लीन कर रहे हैं, तो आपके मन में डॉक्टर संकेत के प्रति आदर बढ़ेगा कि कम होगा। क्यों, हमें भंगी का काम कर रहे हो, डॉक्टर संकेत भंगी बन गए, ऐसा बोलेंगे कि आपका आदर बढ़ेगा उनका। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी बड़ा व्यक्ति तथा कथित सो कॉल्ड अगर छोटा काम करता है तो उसका आदर कभी कम नहीं होता है, उसका आदर बढ़ता ही बढ़ता है ऑलवेज। इसलिए आप लोगों को अगर आपके पद के हिसाब से कोई छोटा काम करने का मौका आया, कभी हिचकिचाना मत, वो देख के कभी भी आपके लोग आपकी निंदा नहीं करेंगे, आपका गौरव ही करेंगे, बोलेंगे शायद नहीं लेकिन मन में आदर जरूर रखेंगे कि इनको कोई भी काम करने में संकोच नहीं है। तो जरूरत है वो हमको करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। लास्ट जो है हमारी आपको रिक्वेस्ट है, इस हॉस्पिटल के प्योर एटमॉस्फेयर को बनाए रखने में और बढ़ाने में सहायता करने के लिए ज़रूरी है कि आपके तरफ से इस वातावरण में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। आप तीन चीज कर सकते हो, आपके यहाँ ज्वाइन करने से स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आपके उपस्थिति से, आपके ड्रेस कोड से, आपके व्यवहार से, आपके बात करने से, जैसे भी आपकी सेवा में जो भी आप कर रहे हो आप ऐड कर सकते हो हमारे वातावरण में, या तो आप न्यूट्रल रह सकते हो, कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, आप में काम कर रहे जा रहे हैं, नंबर टू। और नंबर थ्री, आपको ये पसंद नहीं है तो आप उसको डैमेज कर रहे हो, लोगों से बोल रहे हो कि मत जाओ, ऐसा मत करो, ये तो क्या है, टाइम पास है, ऐसा वैसा, तीन चीज़ आप कर सकते हो। तो हमारा आपको रिक्वेस्ट ये है कि आप डैमेज तो बिल्कुल कभी भी मत करना, अगर नहीं इंटरेस्ट है तो न्यूट्रल लेना, लेकिन बेस्ट इज यू कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग। इतने मेहनत से इसको आज ऐसा डेकोर पे खड़ा किया है, और उसके रहने से आपको लाभ ही लाभ है, कोई नुकसान नहीं है। आपको कोई हरे कृष्ण बनने की जरूरत भी नहीं, अगर नहीं बनना है तो, बनना है तो मौका भी अवेलेबल है, लेकिन अगर नहीं बनना चाहते तो प्रॉब्लम नहीं, कुछ अपना काम आप कर सकते हो। और बेस्ट इज दैट यू कॉन्ट्रीब्यूट, यू कम टू ऑल प्रोग्राम्स, सो एवरी वन वर्क्स टू क्रिएट स्पिरिचुअल एटमोसफियर। आप सब लोगों को मिलकर इसमें, बोलते ना यज्ञ चल रहे हैं, तो आपकी तरफ से भी कुछ आहुति उसमें अर्पण होनी चाहिए, कुछ आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, कुछ सहयोग उसमें होना चाहिए, ताकि तिनका तिनका क्यों ना हो वातावरण बढ़े यहाँ का और लाभ हो। हॉस्पिटल में मीट, फिश, एग्स, मशरूम्स, अनियन, गार्लिक, चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, शराब, व्यभिचार, जुआ, एबॉर्शन, नॉन वेज मेडिसिंस, ये हमारे हॉस्पिटल में अलाउड नहीं है, इन शॉर्ट। तो ये अभी हम थोड़ी देर के बाद में करते हैं, मेरे पास एक पेपर है, मैं लेके आया हूँ। चार प्रकार की स्पिरिचुअल केयर हमारे हॉस्पिटल में होती है। एक है पेशेंट के लिए, मेन हमारा फोकस पेशेंट पे, मेन स्पिरिचुअल केयर वर्क इज ऑन पेशेंट। एक एनवायरमेंटल एटमॉस्फेयर पैदा करने के बाद में जो किसी को केयर दे रहे हैं स्पिरिचुअल केयर, तो एक नंबर वन आइटम है पेशेंट्स, नंबर टू आइटम है एम्प्लॉइज, नंबर थ्री आइटम है डॉक्टर्स, नंबर फोर आइटम है जनरल पब्लिक, बाकी जो पेशेंट रिलेटिव, वेंडर्स, MR, जो भी कुछ आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, उनका यहाँ पर देखभाल होता है। पेशेंट के लिए क्या क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, प्रसाद देते हैं, किताब देते हैं, मोबाइल टेम्पल घुमाते हैं, और मैडम डॉक्टर का नाम क्या है, शलाका, क्लिनिकल रिसर्च कर रहे हैं अभी, इफेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल केयर ऑन पेशेंट हीलिंग कर रहे हैं ना, कितने रिसर्च चल रहे हैं अभी, नहीं टोटल नंबर कितना चल रहा है, रिसर्च नंबर 50 रिसर्च इज गोइंग ऑन, आपको पता होना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च इज डूइंग 50 रिसर्चेस राइट नाउ, दो तीन साल के बाद भी उसका रिजल्ट आपको निकलते हुए आएगा, बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग, बहुत मेहनत कर रहे हैं। कुछ मेडिकल रिसर्च चल रहे हैं, क्लिनिकल रिसर्च, और कुछ रिसर्च चल रहे हैं जो हमारे हॉस्पिटल का स्पिरिचुअल फार्मूला है, वो अपनाने के बाद पेशेंट पर क्या क्या असर होता है, डिप्रेशन है, कैंसर है, हाइपरटेंशन है, बहुत सारी बीमारियाँ हैं, उसके ऊपर क्या क्या असर मिल रहा है, उसका साइंटिफिक स्टडी चल रहा है। ओके, तो ये आप देखिए, फोटोग्राफ दिखाता हूँ आपको, इन पेशेंट स्पिरिचुअल केयर, उनको डिस्चार्ज होने के बाद में रिट्रीट को लेके जाते हैं, कैंसर पेशेंट को रिट्रीट पे लेके जाते हैं हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में, उनके लिए जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स करते हैं 2 महीने में एक बार, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कार्यक्रम होता है 2 महीने में एक बार, प्रेग्नेंट लेडी का एक कार्यक्रम जनरल होता है, डाइट, हेल्थ, फिजियोथेरेपी वगैरह वगैरह, एक कार्यक्रम केवल होता है स्पिरिचुअल ओनली, गर्भ के लिए संस्कार होते हैं इसमें, गर्भ संस्कार के नाम के, फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, लास्ट मंथ प्रेगनेंसी टिल 6 मंथ्स ऑफ लैक्टेशन, इतना ये बड़ा कार्यक्रम है, उसमें एक बड़ा प्रोग्राम बना के रखा है, लेडीज आते रहते हैं रेगुलरली उसके अंदर, उनको बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं, उसके पेट के अंदर जो बालक है उसको, मरीज के रिश्तेदारों के लिए मैंने बताया आपको 3 से 3:30 बजे तक रोज प्रेयर होती है, जो रिश्तेदार हैं उनको नीचे बुलाते हैं मंदिर में, थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं किसका पेशेंट कहाँ एडमिट है, फिर सब मिलकर उनके मरीजों के लिए सबके लिए प्रार्थना करते हैं रोज 3 से 3:30 बजे तक नीचे के मंदिर में। फिर आप देखिए 199 बेड्स है, हर एक को स्टाफ हमारे जो है वो डिवाइड किए हुए हैं, दिन में एक हमारे स्टाफ 12 से 14 मरीजों को देखते हैं, उनका लाइफस्टाइल लेते हैं, उनका डाइट का काउंसलिंग करते हैं, रथ यात्रा लेके जाते हैं, करीब 500 लोगों को हर रोज रथ में लाभ होता है। अभी देखो आप, ये प्री ऑपरेटिव काउंसलिंग हो रहा है इधर, देख रहे हैं आप, पेशेंट बहुत टेंशन में है, कैसे हाथ पकड़ के उनसे कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वार्ड में आने के बाद में उनको माला देते हैं, भगवद्गीता देते हैं, किताब देते हैं, गाइड करते हैं भगवान के विषय में। फिर रथ यात्रा है, ये रथ लेके जाते हैं, मरीज एडमिट है, वो बेड के ऊपर से उनको फूल अर्पण करते हैं। देखिए आप कैसे मरीज कितनी भयंकर अवस्था में, देखो ना, एक्सीडेंट केसेस, फ्रैक्चर केसेस। ये पेशेंट जो है वो कीमोथेरेपी पेशेंट है, सब लोगों को भगवान का संग मिल रहा है, दीपक अर्पण कर रहे हैं। ये एडमिट पेशेंट की सर्विसेज चल रही है, ये सर्विसेज फ्री ऑफ चार्ज है, कोई इसमें चार्ज नहीं है। सब बेड्स हमारे डिवाइडेड हैं, सब जगह को लोग विजिट करते हैं, उनसे बात करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। ये सारी फोटो स्पिरिचुअल केयर एट बेड साइट। मरीज जब भर्ती होता है ना तो उसकी मेंटेलिटी बहुत डिफरेंट होती है, बहुत परेशान होता है। कितना ही बड़ा आदमी हो, पढ़ा लिखा हो, व्हेन ही सिक ही इज डिफरेंट, ही नीड्स लॉट ऑफ केयर एंड इमोशनल सपोर्ट। इसलिए ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखो मरीजों को खास करके उसमें भगवान से प्रार्थना करने की बहुत इच्छा होती है, बहुत लोग रोते हैं भगवान को आते हुए देखकर, हाथ जोड़ के रोते हैं, फूल अर्पण करते हैं। ये डेथ केयर है, करीब 15 से 20 लोग यहाँ पर महीने में एक बार गुजरते हैं। उनको डेथ के पहले गंगा जल, तुलसी, प्रार्थना, भगवद गीता, कोई क्रिश्चियन होगा तो बाइबल, पुराण उनको सुनाते हैं। लास्ट में उनके परमिशन लेते हैं, उनके मुल्ला बिशप बुलाते हैं या तो सन्यासी को बुलाते हैं। सब ओपन है, यहाँ पर कोई बाधा नहीं है किस चीज़ की कि यहाँ पर ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आपको एंड ऑफ लाइफ में जो भी रिचुअल करना है वो फुल यहाँ पर परमिशन है। आप अपने अपने मंदिर के, चर्च के, मस्जिद के मुल्लाओं को बुला सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग का भी एक प्रोग्राम है, वो भी परमिशन लेके हम लोग करते हैं। जो गंगा जल दे रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट का पेशेंट है, और ये भगवान के चरण हैं, जो एक बार हॉस्पिटल में आए थे, वो मरीजों को लगा रहे हैं सब पे। ये आउट पेशेंट के लिए एक काउंटर है, इसमें बहुत सारी किताब, बहुत सारा गाइडेंस, प्रोग्राम के बारे में जानकारी करते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा है ये काउंटर। अच्छा, ये जो है ना, ये एक विशेष चीज़ है। आईसीयू में जो बहुत इंटेंस लोग होते हैं पेशेंट, उनके लिए श्रीमद् भागवती भगवान की कहानी है उसके अंदर, वो उनको पढ़ के सुनाते हैं। उनका राउंड हो गया है, मेडिसिन हो गया, ड्रेसिंग सब कुछ हो गया है, मरीज फ्री है, तो उनको कुछ ने आपको सुनना है। हर आदमी हाँ बोलता है उस समय, क्योंकि करना क्या है, वो दीवार को देखना है, सीलिंग को देखना है, चिंता करने कब जाना है, कब जाना है, कब जाना है घर पे। एवरीबडी आस्किंग वन क्वेश्चन ना, कब घर जाना है, व्हेन यू आर डिस्चार्जिंग मी डॉक्टर। तो उसमें बहुत सारे फ्री टाइम होता है। द बिजिएस्ट मैन ऑन अर्थ व्हेन ही कम्स टू हॉस्पिटल ही बिकम्स फ्री। तो उस टाइम पे उनको भगवान के विषय में पढ़ के सुनाते हैं, कुछ चर्चा करते हैं उनके साथ में। मैंने कहा बताया आपको, भगवान के साथ किसी न किसी प्रकार से जोड़ने का प्रयास करते हैं उनको उस टाइम पे जब वो बीमार हैं। फिर देखिए आप, नीचे हमारा मंदिर है, नीचे जगन्नाथ जी का, उसमें लंच में भगवान को ये आइटम हम लोग अर्पण करते हैं। देखिए आप, इसमें 7 आइटम्स आ जाए, और ये जो भगवान को अर्पण करते हैं इसको डिवाइड करते हैं 10-15 थाली में, स्मॉल स्मॉल। और जो मरीज बहुत बीमार है, बहुत टेंशन में है, बहुत एंग्जाइटी में है, बहुत फ्रस्ट्रेशन में है, बहुत लास्ट स्टेज में है, उनके रिलेटिव्स को या पेशेंट अगर खाने लायक है तो उनको भेज देते हैं हम लोग, फॉर सपोर्ट, फॉर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो ये उसका रिकॉर्ड है, कितने लोगों ने महाप्रसाद लिया, कितने लोगों ने जगन्नाथ का दर्शन लिया। हिस्ट्री लेते हैं डाइट की और लाइफस्टाइल की, प्रसाद देते हैं। हाँ, ऐसा बहुत सीन रेयर होता है, मरीज भी स्माइल दे रहा है, कभी कोई उनको स्माइल लेने का मौका ही नहीं है, सब लोग टेंशन में रहते हैं, कब जाएंगे घर पे, कब जाएंगे घर पे। कोई पूछता नहीं, हाउ आर यू टुडे, हाउ यू फील, ये लोग जाके पूछते हैं उनको, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, बात करते हैं उनसे, डायलॉग करते हैं, उनकी चिंताएं एक्सप्रेस करते हैं, उनसे डिस्कस करते रहते हैं, और फ्री टाइम पे उनके लिए पढ़ते हैं। ये लास्ट स्टेज में था मरीज, सिरोसिस ऑफ लीवर, 29 ईयर ओल्ड ब्रह्मचारी फ्रॉम निगड़ी टेम्पल, मर गए, ये गुजर गए, बहुत साल हो गए उनको। उनकी इच्छा थी कि ये ग्रंथ जो है चैतन्य चरितामृत तो पढ़ा जाए उनके लिए, लेकिन खुद पढ़ने की स्थिति में नहीं थे। तो लास्ट में उनकी केयर के हिसाब से ये पूरा ग्रंथ उनको पढ़ के सुनाया गया। 3.5 महीने हॉस्पिटल में थे, मैंने उनको 2 बार एंड ऑफ लाइफ कर दिया, लेकिन हर टाइम ही वुड सर्वाइव एंड ही वुड गो बैक टू द 5th फ्लोर रूम, एंड फाइनली फिर 3.5 मंथ्स के बाद में फिर वो गुजर गए। बहुत उनको अच्छी तरह से स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में प्रेरित करके, उनके लिए भगवान के विषय में सुनाकर, उनको उनका बहुत माइंड अच्छी तरह से तैयार किया गया डेथ के लिए, और बहुत खुशी खुशी एकदम बड़ी कृष्णा भगवान के विचार में वो चले गए। तो वो हमारे हॉस्पिटल का एक प्रपोजल है, वो एक प्रोजेक्ट है हमारा, कि लास्ट स्टेज के लोगों को भी पूरी तरह से सम्मान के साथ भगवान के ध्यान में विदा करना है। ये भी पेशेंट गुजर गई, उसका नाम प्रेमामयी माता जी था, वो ओवेरियन कैंसर की पेशेंट थी, एक साल तक यहाँ रही हॉस्पिटल में। वो उनको पूरा स्पिरिचुअल केयर इत्मीनान से दिया गया, कम्प्लीटली डेथ के लिए प्रिपेयर करके भगवान के ध्यान में उनको विदा किया गया। ये मैंने बताया आपको ऑलरेडी, गर्भ संस्कार होता है, एंटीनेटल केयर होता है, जेएसडी क्या होता है, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, 6 डेज कोर्स होता है, इसके लिए रिट्रीट्स भी होते हैं हॉस्पिटल की तरफ से। ये हमारा विशेष, मैंने बताया आपको एंड ऑफ लाइफ का हमारा हॉस्पिटल का एक विशेष पैकेज है जो हम लोग सब लोगों को देते हैं। इसका प्रमाण बॉम्ब ब्लास्ट में सबको दिखाई पड़ा, 44 पेशेंट्स 2006 में यहाँ पर एडमिट हो गए एक साथ ऑन द स्पॉट। उसमें ऑन द स्पॉट फर्स्ट आवर में 13 लोग गुजर गए, सब 13 लोगों को एंड ऑफ लाइफ केयर दिया गया, कंप्लीट केयर वॉज गिवन टू एवरीबडी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिफरेंसेस ऑफ रिलीजन, जो भी है उनको केयर दिया गया। बाकी लोग बचे 22 लोग, डेढ़ महीने तक यहाँ पर स्ट्रगल, लाइफ एंड डेथ का स्ट्रगल चल रहा था, तो उनको सारे लोगों को फिजिकल केयर। ये रिकॉर्ड है हमारे हॉस्पिटल का कि बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद में 72 घंटे हमारे हॉस्पिटल के तीनों शिफ्ट के सारे स्टाफ ऑन द फ्लोर अवेलेबल थे, मतलब हाफ स्टाफ हो, आप 3 दिन घर पे गए नहीं, 24 आवर्स ऑन ड्यूटी, खाली जाना आना, थोड़ा रेस्ट करना, वापस आना, बिकॉज इतने लोग एडमिट थे यहाँ पर, तो यू कांट गो होम। तो सब लोगों की खाने पीने की यहाँ व्यवस्था की थी, मरीजों के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए 400 पीपल का खाने का व्यवस्था, स्टाफ लोगों का खाने का व्यवस्था, उनका बाथरूम सब व्यवस्था किया गया था ऑन बोर्ड। 72 आवर्स सब लोगों ने यहाँ पर मरीजों का सेवा किया, एक पूरा एक छावनी हो गया था पूरा हॉस्पिटल, पूरा इंक्वायरी काउंटर, मेरा मरीज यहाँ पर एडमिट है क्या, उसकी स्थिति क्या है, वो किधर होगा, क्या हो रहा है, गुजर गया तो उधर जाओ, बॉडी आइडेंटिफाई करो, इधर जाओ तो इधर पेशेंट एडमिट है देखो, सब पूरा एक छावनी बनाया था पूरा उसका, और 1.5 मंथ तक चलता रहा। तो ये एंड ऑफ लाइफ केयर हमने बहुत मेहनत से बनाया है, उसका उद्देश्य एक ही है कि अगर किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल में उसका मौत होना है तो फिर भी भगवान का याद करते करते उसको जाना चाहिए, सम हाउ टू मेक हिम रिमेंबर गॉड बिफोर गोइंग, दैट इज अ पैकेज दैट वी हैव क्रिएटेड। उसका एक 2.5 आवर का PPT है मेरे पास, सेमिनार है, उसको हम सिखाते हैं हमारे स्टाफ को और बाकी लोगों को, आप देखिए इसमें, देखते जाइए पता चले। मेडिकल और स्पिरिचुअल केयर एक साथ चलती है, कोई कन्फ्यूजन नहीं उसके अंदर। ये क्या है, बॉम्ब ब्लास्ट का पेशेंट डेफ हो गया है, वो बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ से, इसलिए वो उसको भगवान का नाम जो है पेपर पे लिखकर, उसको पढ़ने को तो आता है, बोलने को तो आ रहा है, उसको कान में सुना नहीं पड़ रहा है। तो पहले वो पूछ रहा था क्या बोल रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो मैंने कहा उसको लिख के दिखाओ, तो वो लिख के उसको तुरंत समझ में आया। और ये टाइमली फूड, हाँ, पेशेंट के रिलेटिव सब ढूंढ रहे हैं इधर उधर, खाना नहीं खा रहे हैं, टेंशन में हैं, भूखे हैं, तो हमारे हॉस्पिटल की तरफ से उनको 72 आवर्स तक भोजन का व्यवस्था भी किया गया। अभी संक्षेप में आपके लिए क्या क्या प्रोग्राम्स हैं मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको। प्रभात जागृति बुधवार को होता है 6 AM to 8:30 AM विद अ लेक्चर, जो सुबह नहीं आ पाते हैं उनके लिए दोपहर को प्रोग्राम है मंगलवार को, जैसे आज है 2:30 to 4 PM हर ट्यूजडे को होता है। ओके, 5th फ्लोर में ऑडिटोरियम, दिस इज अवर कॉमन प्लेस ऑडिटोरियम, यहाँ पर ये सब प्रोग्राम होता है। और प्रेयर्स होती है, प्रेयर में एक विशेष प्रार्थना हम गाते हैं संस्कृत वाली, चैतन्य शिक्षाष्टकम, वो 3 मिनट में गाते हैं और बाद में 5 मिनट का उसमें स्पीच देते हैं। फिर रोज़ सुबह 9:15 बजे नरसिम्हा आरती होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग टर्न बाय टर्न नीचे आकर नरसिम्हा आरती गाते हैं। बर्थडे के दिन हमारे हॉस्पिटल में स्टाफ लोगों को हम लोग स्पिरिचुअल केयर में बुलाते हैं और उनको भगवान का लंच प्रसाद के रूप में देते हैं। अगर वो दिन नहीं हो सकता है तो बर्थडे के उपलक्ष्य में आज कल परसों कभी भी आपको बुलाकर आपका टाइम एडजस्ट करके आप और आपका सीनियर एक स्टाफ को बैठ के पूरा लंच हम लोग साल में एक बार देते हैं हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, और फेस्टिवल्स करते हैं। देखिए ये जो फोटोग्राफ है ये दोपहर के प्रोग्राम का फोटोग्राफ है, आप देख रहे हैं सब लोग बैठकर भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। ये कार्यक्रम जो चल रहा है ये भी स्टाफ के लिए स्पिरिचुअल केयर के बारे में समझाने के लिए बनाया गया है। इसमें फर्स्ट पार्ट पोर्शन आप आज कर रहे हो, फॉलोअप इंडक्शन कल करोगे, और एक प्रोग्राम भी आएगा अगले महीने से, रिफ्रेशर इंडक्शन, मतलब ये दो कार्यक्रम होने के बाद में आप काम शुरू करेंगे, फिर साल में एक बार आपको दोबारा हम मिलेंगे और कुछ पॉइंट्स पर आपको लेटेस्ट अपडेट देंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, कुछ बताएंगे डिटेल में उसके बारे में, उसका नाम है रिफ्रेशर इंडक्शन, वो अगले महीने से इम्प्लीमेंट हो रहा है। फिर देखिए आप ये स्टाफ जो है ये कार्तिक महीने में भगवान को दीपक अर्पण कर रहे हैं, पेशेंट भी करते ही हैं। फेस्टिवल्स में क्या क्या होते हैं देखिए, रंगोली होती है। अभी ये कौन सा फेस्टिवल है, लेटेस्ट फेस्टिवल गोवर्धन पूजा, साथ में कुकिंग होता है, सब स्टाफ मिलकर कुकिंग करते हैं, ड्रामा। और ये फोटो में विशेषता देखिए आप, ये भगवान का जो गोवर्धन पूजा का डेकोरेशन यहाँ पर है ना, माउंटेन की तरह पूरा डेकोरेटिव आइटम्स भगवान को अर्पण कर रहे हैं, और यहाँ पर नाटिका हो रही है हा? फिर सब लोग मिलकर भोजन ले रहे हैं, स्टाफ हमारे, उन्होंने खुद खुद ही अपने हाथ से बनाया और खुद ही इसका आनंद ले रहे हैं महाप्रसाद के रूप में। हरे कृष्णा। डॉक्टर दलाल भी सर्विस कर रहे थे उधर, ये सब हमारे नर्सिंग स्टाफ भोजन कर रहे हैं। ये भी उत्सव में स्टाफ लोगों के द्वारा बनाते हैं और भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान का अभिषेक होता है, कीर्तन करते हैं, कोई भेदभाव नहीं उसके अंदर, मैनेजर्स डायरेक्टर्स सब साथ में नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं। ये जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा हॉस्पिटल की, डॉक्टर दलाल, ये रथ यात्रा का बहुत सुंदर दृश्य है। ये भी गोवर्धन पूजा का है, पिछले सालों का है ये, हाँ बैक पास्ट ईयर्स, ये भी पास्ट ईयर्स का है। डॉक्टर्स पकौड़े बना रहे हैं सब लोग मिलकर, ऑल डॉक्टर्स। और ये बर्थडे, हाँ इनका बर्थडे है, इनका नाम है किशन कोत, और ये प्रफुल्ल पटेल उनके डिपार्टमेंट के हैं, ये हमारे डिपार्टमेंट के, उनके साथ बैठकर उनको लंच सर्व कर रहे हैं। और एक विशेष बात है हमारे हॉस्पिटल में, हमारे हॉस्पिटल में बहुत संत लोग आते हैं, आज भी ये प्रभु जी महाराज जी हॉस्पिटल में विराजमान है, आज हिज होलीनेस जयपता का स्वामी, ये हमारे इस्कॉन के बहुत बड़े महाराज हैं। हाँ इनको 3-4 साल पहले स्ट्रोक हुआ था और वो पैरालाइज हो गए हैं, तो बहुत सुंदर दिखने में थे पहले, अभी वो पैरालाइज हो गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही पावरफुल, स्पिरिचुअली पावरफुल सन्यासी है वो, तो वो उनका हर महीने में एक बार उनको एक बोतल अल्ब्यूमिन देना पड़ता है, उसके लिए कल से एडमिट है वो, अभी भी कल दिन भर थे हॉस्पिटल में। तो इनके 30,000 शिष्य हैं उनके अलोन, 30,000 डिसाइपल्स, इज अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी। वो है अमेरिकन लेकिन ही इज़ अ इंडियन सिटीजन, और बंगाली इतना अच्छा बोलते हैं, और बंगाली में कई किताब लिखी है उन्होंने, अनेक किताबों का अनुवाद भी किया और खुद लिखी भी है। तो वैसे ही वो स्वामी जी हैं, जयपता का स्वामी, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, मेरे गुरु जी के गुरु भाई हैं वो। साथ साथ में हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे कैंप होते हैं, कितना कितना बताएं आपको, बहुत कैंप होते हैं हॉस्पिटल में हमारे, उसमें से एक प्रधान कैंप है पंडरपुर, आषाढ़ी एकादशी में 40-50,000 पेशेंट्स को हम लोग ट्रीट करते हैं, 5 जगह कैंप लगाते हैं, एक दिंडी में कैंप लगाते हैं, वॉकिंग पीपल आर वॉकिंग, तभी उस साथ साथ में हमारा कैंप लगता है, वो अलग कैंप टीम जाती है। और पंडरपुर में एकादशी के समय 5 दिन 5 जगह कैंप लगता है, 5 डिफरेंट लोकेशंस ऑफ क्यू, वहाँ पर लाइन लगा के हम वहाँ पर कैंप लगाते हैं। 1,00,000 प्लेट प्रसाद रोज का वितरण करते हैं, फ्री प्रसाद हम 1,00,000 प्लेट्स, एकादशी को एकादशी प्रसाद और दशमी को और द्वादशी को नॉर्मल फूड, पेट भर के सबको 1,00,000 प्लेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट एवरी डे। और 35 लोगों का एक वार्ड खोलते हैं वहाँ पर, इमरजेंसी वार्ड, और वो फुल रहता है ऑल डेज, जो भी आता है एडमिट होता है, IV लगाते हैं उसको, फ्रैक्चर, CLW, जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट जो है चलते रहता है 24 आवर्स अ डे। और बाकी 5 कैंप अलग, ये हॉस्पिटल के हॉस्पिटल एक जगह खोलते हैं टेम्पररी, वहाँ पर ER इमरजेंसी वार्ड खोलते हैं, उधर भी जनरल वार्ड जनरल सर्विसेज चालू करते हैं, वहीं से ही फूड डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत अच्छा वातावरण रहता है। अराउंड 200-300 पीपल गो टू सर्व फ्रॉम हॉस्पिटल आउटसाइड सब मिलके। और एक हमारा वो कैंप होता है, वो बरसाना में होता है, बताऊंगा उसके बारे में। और एक अनोखा अभियान हमारे हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल के तरफ से स्पिरिचुअल केयर डिपार्टमेंट की ओर से हर साल में यात्रा जाती है, यात्रा तभी 1 हफ्ते के बाद में जगन्नाथपुरी की यात्रा जाने वाली है, 175, अभी फुल हो गया सब, नो सीट्स अवेलेबल नाउ, 175 पीपल आर गोइंग। जगन्नाथपुरी में 5 दिन रहेंगे हम लोग, सब जगह जाएंगे, दर्शन करेंगे, उसके कुछ लास्ट जगन्नाथपुरी यात्रा 2009 में गई थी, उसके कुछ फोटोग्राफ्स देखी, जगन्नाथपुरी का मंदिर देखिए, और यहाँ पर हमारे जितने भी स्टाफ गए थे वो पीछे भी लोग बैठे हुए थे, मेरा प्रवचन हो रहा है उसमें, जगन्नाथ जी का मंदिर पीछे, ये जगन्नाथ जी का मंदिर है। नेक्स्ट यात्रा दीपावली के बाद में होगी, और मोस्टली नेक्स्ट यात्रा वृंदावन में होगी, तो इसमें सभी स्टाफ लोगों को निमंत्रण है, हम लोग जितना भी हो सके उतना सस्ते में और अच्छी व्यवस्था लेके, और हमारी यात्रा का विशेषता यह है कि हम लोग खाली वो ये मंदिर में जाओ ये ऐसा नहीं करते, आपको वहाँ बैठ कर समझाते हैं कि मंदिर का इतिहास क्या है, उसका स्टोरी क्या है, इधर क्या है, क्या हमको सीखना है वहाँ पर। यात्रा के बहुत सख्त नियम होते हैं, कोई प्लास्टिक बॉटल, कोई ये सब, ड्रेस कोड सब हमारा एकदम स्ट्रिक्ट होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ जाएंगे उस मंदिर का महाप्रसाद हम भोजन की व्यवस्था करते हैं एज प्रसाद, और हर जगह पर जाने के बाद में उस जगह का स्टोरी बताते हैं, बैठ के समझाते हैं उसी तरह से, और भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करना है वो बताते हैं उसके अंदर। इस तरह से हमारी यात्रा होती है, और कारण उसका यह है कि जहाँ पर जाएंगे उस जगह आपके याद में हृदय में बैठ कर बम्बई आनी चाहिए आपके साथ। ऐसा नहीं कि 10 जगह मत्था टेका, पता नहीं कहाँ टेका, कहाँ गए, कुछ याद नहीं आ रहे। फ़ायदा क्या यात्रा करने का उसका, उल्टे एक जगह में जाओ, उस जगह को पूरा समझो, उसकी कथा समझो, याद करो उसको, और वो याद बम्बई में लेके आओ। तो इस बार जगन्नाथपुरी की यात्रा है। और दूसरा कैंप हमारा होता है बड़ा एकदम, 1992 से हो रहा है वो, 23 साल हो गए उसको, वो है बरसाना। बरसाना यानी मथुरा में उतरेंगे आप तो मथुरा से 50 किलोमीटर आगे वो गांव है, राधा रानी का पिताजी का घर है वहाँ पर, तो बहुत पवित्र है वो, बहुत ही स्पिरिचुअली पावरफुल जगह है। तो हमने वहाँ पर कैंप शुरू किया था 1992 में, उसके बाद में साल एनुअल कैंप करते थे, फिर मंथली कैंप करना शुरू किया 2007 में, उससे भी पेशेंट पूरे नहीं हुए। फिर 2011 में कुछ लोग यहाँ से इंस्पायर्ड होकर शिफ्ट हो गए वहाँ पर, परमानेंट शिफ्ट हो गए, डॉक्टर्स एंड टीम। तो फिर वो 2011 से रेगुलर हॉस्पिटल चल रहा है। अभी हमने वहाँ पर 5 एकड़ जगह लिया है और वहाँ पर बांधेंगे हॉस्पिटल। अभी हॉस्पिटल जो है एक आश्रम में है, आश्रम ने हमको फ्री में बांध के दिया है उसको हॉस्पिटल को, लेकिन वो छोटा है। अभी वहाँ पर एनुअल कैंप होता है, फरवरी में होता है, और फुल डे ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर वहाँ पर सेवा होती है, और 90% सेवा फ्री में होती है। केवल कुछ लोग जो पैसा पे कर सकते हैं उनके लिए फेको इमल्सिफिकेशन, फेको सर्जरी रखा है पेमेंट करके, और थोड़ा सा क्रॉस सब्सिडी भी करते हैं उससे। हमारे हॉस्पिटल में स्कूल ऑफ नर्सिंग है, इसमें डिप्लोमा और बीएससी का कोर्स हम चलाते हैं। उसमें हमने स्पिरिचुअल केयर का एक बनाया करिकुलम अपनी तरफ से, 3 साल के लिए अलग अलग बनाया है, उसको पढ़ाते हैं, उसके एग्ज़ाम लेते हैं। और नर्सिंग स्कूल के अंदर उनकी कम्युनिटी पोस्टिंग जो है वो हम बरसाने में करते हैं, उसको सेटिंग करके रखा है उसमें। और कम्युनिटी हेल्थ सर्विस करके पूरा एक डिपार्टमेंट है जिसकी तरफ से सारे हमारे जो सेवाएं चलती हैं कैंप्स की वहाँ से कोऑर्डिनेट होती हैं। और टिटॉन फैमिली विजन फाउंडेशन है हमारा नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, उसके द्वारा सब जगह पर आए कैंप्स हमारे बॉम्बे में, बाहर बरसाने में, सब जगह चल रहे हैं। नेत्रदान करने का हमारा प्लानिंग है उसमें। और इस हॉस्पिटल में एक विशेष डिपार्टमेंट है, उसका नाम है हॉस्पिस। एक हॉस्पिस वृंदावन में हमारा डेडिकेटेड हॉस्पिस है, 2 मंजिल की बिल्डिंग है, उसके अंदर पूरा रहने का इंतज़ाम, पेशेंट का अराउंड 40 पेशेंट्स कैन बी एडमिटेड देयर। और ये हॉस्पिटल में भी हॉस्पिस है। हॉस्पिस का मतलब है कि टर्मिनली इल जो मरीज होते हैं, लास्ट स्टेज में होते हैं, जो अच्छे नहीं हो सकते हैं, उनको इत्मीनान से मृत्यु को सामना करने के लिए हेल्प करना उस डिपार्टमेंट का काम है। वो डिपार्टमेंट से लोग ठीक होकर घर नहीं जाते हैं, पेटे नहीं बांटते, वो लोग में जो आते हैं वो हर व्यक्ति का देहांत होता है, बट उनको मेडिकल, नर्सिंग, सोशल और स्पिरिचुअल देखभाल की प्राप्ति होती है। स्पेशल डिपार्टमेंट है। और जितना मरीज डेथ के पास में आता है उतना बाकी सेवाएं कम होती है और स्पिरिचुअल केयर सर्विसेज बढ़ जाती है। और लास्ट में उनका उद्देश्य है कि वो मरीज मरने वाला है, उसको पूरा तैयार करके उसको भगवान का ध्यान कैसे हो जाते वक्त उसकी व्यवस्था करके उसको बाद में विदा करते हैं, और उसके बाद में 13 महीने तक उनके फैमिली मेम्बर्स को सांत्वना के रूप में भी केयर देते रहते हैं। तो हॉस्पिस केयर बिगिंस एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस ऑफ द टर्मिनली इल डिसीज, टर्मिनल डिसीज, एंड एंड्स आफ्टर 13 मंथ्स ऑफ डेथ, कंटिन्यूज थ्रू द डेथ एंड आफ्टर डेथ ऑल्सो फॉर रिलेटिव फॉर 13 मंथ्स आफ्टर डेथ। और केवल मरीज की सेवा नहीं होती उसके अंदर, मरीज और जितने भी क्लोज वंस हैं वो सब लोगों की उसमें देखभाल होती है, इमोशनल, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, सोशल, फाइनेंशियल, हर प्रकार की हेल्प जो मरीज को कम्फर्ट करे। और डेथ उनका जो एक्सपीरियंस है वो पेनफुल तो होता ही है, लेकिन जितना हो सके उतना आसान और प्रेम भरा हो। पीपल शुड नॉट क्राई ऑल द टाइम, दे शुड ऑल्सो फेस द डेथ एज पार्ट ऑफ लाइफ। गिव देम स्ट्रेंथ बेसिकली. बहुत अनोखा डिपार्टमेंट है, बहुत अद्भुत डिपार्टमेंट है, यहाँ पर भी काम करते हैं. और वो डिपार्टमेंट का भी नए बिल्डिंग के अंदर पूरा एक पूरा अलग एरिया उसका बनने वाला है. और आपके खुशी के लिए जानकारी दें, हम अभी 2-3 महीने के बाद ही पीछे की जगह पर एक और नया बिल्डिंग हमारा बनने वाला है. ये रिहैब का बिल्डिंग टूट जाएगा और रिहैब का ही शिफ्ट करेंगे और वो पूरा जगह लेकर, ये कितनी जगह है, इतनी एरिया का एक बिल्डिंग 10 मंजिल का बनने वाला है. उसमें फिर हमारा रेडियोथेरेपी, MRI और कुछ डिपार्टमेंट्स यहाँ से वहाँ शिफ्ट करेंगे, वहाँ से यहाँ रखेंगे ऐसा करके. और 150 बेड्स हमारे हॉस्पिटल के बढ़ जाएंगे. जैसे वो बिल्डिंग बनेगी तो टोटल हमारा बेड अभी आज 200 है तो वो 350 हो जाएगा. उम्मीद ऐसी है 300 तो कम से कम होगा ही, और ट्राई करेंगे 350 भी हो सके तो अच्छा है, क्योंकि लोगों का सेवा का डिमांड बहुत ज़्यादा है और बेड्स बहुत कम है हमारे पास, तो नया बिल्डिंग बनाना बहुत ज़रूरी है. तो उसके अंदर इस डिपार्टमेंट को भी काफ़ी अच्छी जगह जगह मिलेगी और कई डिपार्टमेंट्स को अच्छी जगह मिलेगी, और जिससे हमारी सेवाओं का जो क्वालिटी है वो बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे. हरे कृष्णा और धन्यवाद.